ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। आज की सुबह कैसी रही आप सबकी? बहुत अच्छे। हाँ, सीख लिया सभी ने डिटॉक्सिफाई माइंड कैसे करना है? हाँ जी। हाँ अच्छा, आप सभी से निवेदन है कि जो भी पीछे बैठे हुए भाई बहने हैं कृपया आगे आके बैठेंगे। ये सेशन सभी लाइव जाते हैं तो उसका व्यू अच्छा आता है, कृपया सभी आगे बैठे। ज्यादा समय न लेते हुए अभी सेशन शुरू करते हैं। यू नो आगे आ रहा है, आंखों में आ रहा है। ओम शांति। हमारे इस कॉन्फ्रेंस का अभी ये उद्घाटन सत्र है और इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है लॉ, सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी, अ बैलेंस पर्सपेक्टिव, कानून, समाज और आध्यात्मिकता, एक संतुलित दृष्टिकोण। इसके ऊपर एक कविता याद आई मुझे, कांची कामाकोटी पीठ के 68वें परमाचार्य चंद्रशेखरन सरस्वती द्वारा एक कविता लिखी गई थी, मैत्रीम भजता। और ये कविता एमएस सुबलक्ष्मी, जो रिनाउंड सिंगर हैं, उन्होंने 1966 में यूनाइटेड नेशंस में गाई थी और उसका बहुत सुंदर एक भावार्थ मैं बताने जा रही हूँ कि सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करें, दूसरों को अपने समान समझे, युद्ध का त्याग करो, प्रतिस्पर्धा का त्याग करो, दूसरों पर आक्रमण करना छोड़ दो। पृथ्वी हमारी माता है, कामधेनु की तरह है, वो हमारी इच्छाएं पूरी करती है। ईश्वर हमारे पिता है, वे सभी के प्रति दयालु है। हे दुनिया वालों, संयम रखो, दान करो और दयालु बनो, सभी लोग खुश और समृद्ध रहें। ये कविता आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम सटीक साबित होती है। तो अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आज के हमारे सभी मंच के मेहमान, सभी मंच पर आएंगे, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी जी, लोकायुक्त फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद। आप आएंगे और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हमारे सभी मेहमानों के लिए आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते रहेंगे। आदरणीय राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी जी, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू, आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी, चेयरपर्सन जूरिस्ट विंग, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गौरीशंकर सतपति जी, जज हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रमाथ पटनायक जी, चेयरपर्सन उड़ीसा रियल एस्टेट अपलेट ट्राइब्यूनल भुवनेश्वर, ब्रदर एमवी रमेश जी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी जी, वाइस चेयरपर्सन जूरिस्ट विंग, डॉक्टर रश्मि ओझा नेशनल कोऑर्डिनेटर, सभी का स्वागत करते रहे। और भाइयों से निवेदन है आप कृपया मेहमानों को बिठाने के लिए सहयोग दें। राजयोगिनी लता दीदी जी नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग, भ्राता डॉक्टर बी के नथमल जी नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग, ब्रदर एम वी रमेश प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैदराबाद तेलंगाना, ब्रदर हितेंद्र मेहता मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ईपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी कर्तव्य दिन से स्वागत करते रहे। इस सत्र की शुरुआत करने से पहले मैं सर्वप्रथम सुप्रीम जस्टिस परमपिता शिव परमात्मा का आज के इस सत्र के चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर ए राजशेखर रेड्डी लोकायुक्त फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद आपसे नम्र निवेदन है कृपया आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा का इस सभागार में आवाहन करती हूँ। उसी प्रकार हमारी अव्यक्त हुई दादियां उनके आशीर्वाद हमारे साथ है, उनकी भी सूक्ष्म रूप में उपस्थिति यहाँ है ही, तो हम उनका आवाहन करते हुए 3 मिनट अभी परमात्मा की याद में बैठेंगे, फिर हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे।
ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। विचार शुभ कर्मों से ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
तो हमने गीत सुना, ईश्वर से जो प्रीत लगाए गुणवान वो बन जाए। तो आपको यहाँ 3 दिन यही सिखाया जाएगा कि ईश्वर से कैसे प्रीत लगाना है। सभी एक सूचना है, सभी बाहर जो हमारी आवाज सुन रहे हैं वह सभी हॉल में अंदर ही आएंगे। सभी से विनती है आप कृपया हॉल में अंदर आए और आप सभी को प्रसाद और पानी इसी हॉल में मिलेगा, इसलिए बाहर जाने की आवश्यकता अभी नहीं है। बाहर जो भी सुन रहे हैं कृपया हॉल में आके बैठे। हमारी भारतवर्ष की परंपरा होती है कि हम सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, तो आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। मंचा से मेहमानों का स्वागत करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को आमंत्रित करती हूँ। आप मंचा से मेहमानों को तिलक और बैजस द्वारा उनका स्वागत करें। स्वागत की परंपरा तो हमारे भारत में बहुत लंबी चलती है, पर स्वागत की परंपरा को थोड़ा बाजू में रखते हुए हम आज के विषय जो लॉ सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी और बैलेंस पर्सपेक्टिव है, इसके थीम सॉन्ग जो हमारे मधुरवाणी ग्रुप के द्वारा गाया जाएगा, भ्राता सतीश जी जिन्होंने गीत की रचना की है, आपने 3000 से अधिक गीतों की रचना की है, करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे इनका। हमारे जो भी ऐसे प्रोग्राम्स कंटिन्यू होते रहते हैं, आप लोगों को आश्चर्य होगा हमारे यहाँ साइमल्टेनियसली सारे ही कॉम्प्लेक्सेस में प्रोग्राम्स चलते हैं और शांतिवन जो हमारा नीचे का कॉम्प्लेक्स है वहाँ एट ए टाइम 3-4 प्रोग्राम्स चलते हैं। वो कंटिन्यू एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम से तीसरे प्रोग्राम में जाके सबका स्वागत करते हैं और इतने सारे गीत की रचना करते हैं और गाते भी हैं। और आपके साथ है नितिन भाई, आप भी बहुत अच्छे गायक हैं, हम इनको और भी सुनेंगे। और बितेंद्र भाई भी हमारे साथ में है, आप दोनों भी ज्ञान सरोवर निवासी हैं, तो आज का थीम सॉन्ग आप गाएंगे मधुरवाणी ग्रुप।
आपका हुआ यहाँ है शुभागमन, हो रहा है अति प्रसन्न एक एक मन, धन्य हो गई धरा गा रहा गगन, खिल उठे चमन चमन, विहंस पड़े सुमन, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अपना अभिनंदन स्वीकार।
समाज आध्यात्मिकता कानून समाज आध्यात्मिकता जब इनमें संतुलन आएगा नई दृष्टि नया दृष्टिकोण आबू से जन जन पाएगा न्याय विदों का महामिलन ये न्याय विदों का महामिलन ये नया गगन दिखलाएगा ज्ञान सरोवर सम्मेलन से स्वर्ग सदन मुस्काएगा ज्ञान सरोवर सम्मेलन से स्वर्ग सदन मुस्काएगा la 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 he 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 ha 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 न्यायपालिका के सिर पर जिम्मेदारी का ताज है न्यायपालिका के सिर पर जिम्मेदारी का ताज है मगर आज ये ताज हिल रहा आपको रखनी लाज है परम न्यायकारी आए हर परम न्यायकारी आए हर संकट हल हो जाएगा ज्ञान सरोवर सम्मेलन से स्वर्ग सदन मुस्काएगा ज्ञान सरोवर सम्मेलन से स्वर्ग सदन मुस्काएगा
आपकी तालियों की आवाज आपकी उपस्थिति के तस्दीक करती है
la 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 he 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 ha 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 adhyatm sashaktikaran se hum samast samadhan kare adhyatm sashaktikaran se hum समस्त का समाधान करे स्वर्णिम आचार विचार से स्वर्णिम भारत निर्माण करे विश्व गुरु भारत से न्यायिक
बाबा
विश्व गुरु भारत से न्यायिक समाज दर्शन पाएगा ज्ञान सरोवर सम्मेलन से स्वर्ग सदन मुस्काएगा ज्ञान सरोवर सम्मेलन से स्वर्ग सदन मुस्काएगा la 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 राजयोग के प्रयोग से लाए स्नेह शांति सद्भावना राजयोग के प्रयोग से लाए स्नेह शांति सद्भावना कथनी करनी एक कर मूल्यों की करे स्थापना शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारियों का शिव शक्ति ब्रह्म कुमारियों का यह तप रंग लाएगा ज्ञान सरोवर सम्मेलन से स्वर्ग सदन मुस्काएगा ज्ञान सरोवर सम्मेलन से स्वर्ग सदन मुस्काएगा न्याय विदों का महामिलन ये नया गगन दिखलाएगा न्याय विदों का महामिलन ये नया गगन दिखलाएगा ज्ञान सरोवर सम्मेलन से स्वर्ग सदन मुस्काएगा ज्ञान सरोवर सम्मेलन से स्वर्ग सदन मुस्काएगा
बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई एंड ग्रुप आपने हम सभी की न्यायविदों की महिमा भी की तो हमें हमारा कर्तव्य भी याद दिलाया और हम किस प्रकार से इस विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं ये भी हमें ज्ञात कराया थैंक यू अभी मैं स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ कुमारी अनुश्री आप नासिक से हैं आप भरतनाट्यम की 5th एग्जाम पास कर चुकी हैं गंधर्व महाविद्यालय मुंबई से और काफी जगह आपने परफॉर्मेंसेस दिए हैं अपने भारतवर्ष में तो अभी आप आएंगी और अपना स्वागत नृत्य प्रस्तुत करेंगे कुमारी अनुश्री
आई मन गाता गुणगान आपका शिव बाबा स्वागत है आपका
शुभम शुभम स्वागतम
बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी वैष्णवी दीदी जी आपका सम्मान कर रही है हम फिर से तालियों से उसका उमंग उत्साह बढ़ाते हैं अभी शब्दों द्वारा आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठी जी वाइस चेयर पर्सन जूरिस्ट विंग आपके बारे में मैं क्या कहूँ आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान स्वयं देता है आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और आप इस जूरिस्ट विंग के वाइस चेयर पर्सन हैं आप मोर देन 40 इयर्स से आप इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और बहुत निर्भीक होकर जज की पोस्ट पे होते हुए भी बहुत निर्भीक होकर आप रहे हैं और समाज कल्याण के भी बहुत कार्य करते हैं सदा ही व्यस्त रहते हैं समाज कल्याण के कार्य में तो आपकी आध्यात्मिकता पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइव्स में दिखाई देती है तो ज्यादा न कहते हुए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी डी राठी वाइस चेयरपर्सन जूरिस्ट विंग हम सभी का शब्द सुमन द्वारा स्वागत करेंगे
थैंक यू श्रद्धा बहन आज हम सबके मीठे प्यारे बाबा ने बोला कि बच्चे ये मेरा ईश्वरीय दरबार है तो हम सबके प्यारे मीठे बाबा सर्वशक्तिवान के इस मीठे दरबार में विराजमान आप सभी प्रभु के निवरे रत और मेरे आत्मीयजनों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत और वंदन करता हूं मंच पर विराजमान ब्रह्मा कुमारी संस्था की जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड परम श्रद्धे आदरणीय स्वदेश बहन जी हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि अति शीघ्र पधार रहे हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी जी जो लोकायुक्त हैं तेलंगाना से पधारे हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गौरी शंकर जी सतपथी उड़ीसा हाईकोर्ट के सिटिंग जज हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रमथ पटनायक जी चेयरपर्सन उड़ीसा रियल इस्टेट अपेलेट ट्रिब्यूनल भुवनेश्वर से पधारे हैं ब्रदर एम वी रमेश प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैदराबाद तेलंगाना ब्रदर हितेंद्र जी मेहता दिल्ली से पधारे हैं आदरणीय बी के पुष्पा दीदी जी बहुत सीनियर राजयोग की टीचर और दिल्ली करोलबाग पांडव सेवा भवन की इंचार्ज हैं और हमारी जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन हैं आदरणीय नथमल भाई साहब जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जूरिस्ट विंग के बी के श्रद्धा बहन जो हमारे मंच का संचालन कर रही हैं और बहुत ही सुशील और श्रेष्ठ वक्ता जो ऑलवेज बिजी रहती हैं बॉम्बे से पधारी हमारी बहन डॉक्टर रश्मि ओझा जी आप सबका भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं आप लोगों की उपस्थिति से ही यह कार्यक्रम सफल हो पाया है हमारी अपनी संस्था ब्रह्मा कुमारी सारे विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है कि सारा समाज जागृत हो जन जन घर घर हरेक इकाई सुख शांति आनंद वैभव समृद्धि ऐश्वर्य धन धान्य से फलीभूत हो जाए और आपको आश्चर्य होगा कि हमारी ये संस्था हम सब की इसका सारा संचालन विद्वान बहनों के पास है। और बहनें भी हमारी ऐसा नहीं है कि उनके लौकिक घरों में कोई कारण था जिसके कारण वह यहां समर्पित हो गई। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अभी आपने बहन जी को सुबह सुना, धनाढ्य परिवारों से अपना सर्वस्व त्याग करके सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से निकल गई कि यह सारा विश्व सुखी बन जाए। तो ऐसी हमारी मीठी प्यारी आदरणीय बहनों के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि बहुत जोरदार करतल ध्वनि के साथ ब्रह्मा कुमारी बहनों का हम स्वागत करें, संस्था का स्वागत करें। आज का विषय बहुत प्रासंगिक, नीड ऑफ द आवर, कानून, समाज और आध्यात्मिकता, इसमें एक संतुलित दृष्टिकोण हो, यह विषय लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आपके और हमारे विचार आदान प्रदान हो एक दूसरे से और एक हम नई दिशा जागृत करें सारे समाज में, देश में, विदेश में, इस बात को जन जन तक पहुंचाएं। और यह कर्तव्य हमारा और ज्यादा बन जाता है जब हम लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए अधिवक्ता हों, न्यायाधीश हों या लिटिगेंट्स हों। कानून या कहें विधि, ये एक ऐसी वीणा है जिसके तार न्याय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। और ये जब तार झंकृत होते हैं और जब ध्वनि इससे निकलती है तो अधिकार और कर्तव्यों का बोध समाज के हर नागरिक को कराता है। विद्या, विधि या कानून, एक ऐसा समाज चाहता है जो सुदृढ़ हो, अनुशासित हो। कानून केवल यह नहीं चाहता कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकल जाए, सदैव खुशहाल रहे, यह कानून की मंशा होती है। ये तो समय की बलिहारी है। हम देख रहे हैं कि जो कानून जानते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो कानून का पालन कराते हैं, जो कानून का इंटरप्रिटेशन करते हैं, उन सब के तालमेल कैसे बिगड़े हुए हैं। हम रोज टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर्स देखते हैं, कोई एक दूसरे का सम्मान करना नहीं चाहता, कोई एक दूसरे को समझना नहीं चाहता, रोज अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं चाहे जनता परेशान होती रहे। मुझे याद आता है 1980 के दशक में जब मैं प्रैक्टिस किया करता था हाईकोर्ट में, तब एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का धारा 106 टीपी एक्ट पर कि मकान मालिक को मकान खाली कराना हो तो धारा 106 टीपी एक्ट का नोटिस दिया जाए और मैंडेटरी है, और उसके आधार पर देश भर के कई मुकदमे खारिज हो गए, लैंडलॉर्ड परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद फिर एक जजमेंट आ गया कि धारा 106 टीपी एक्ट का नोटिस आवश्यक नहीं है। अब सोचिए कि आपके रोज के दृष्टिकोण बदलने से आम जनता का कितना नुकसान होता है। आज थोड़े दिन पहले की बात है, एक न्यायाधीश महोदय मिले, उन्होंने कुछ महीनों पहले एक जजमेंट दिया, कुछ महीनों बाद उसी पॉइंट पे दूसरा जजमेंट दिया, कहते हैं कि 3 महीने पहले मेरा दृष्टिकोण दूसरा था और अब मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। आपके दृष्टिकोण बदलने से समाज का क्या हो रहा है, आपको कोई चिंता है? नहीं है। ये जो सब व्यथाएं हैं, इसी को लेकर यह सब्जेक्ट हमने रखा है कि कानून, समाज और आध्यात्मिकता में क्या तालमेल है, इनका संतुलन क्यों आवश्यक है। जैसे मैंने आपको कानून की बात करी, ऐसे ही समाज हमारा हमारे सामूहिक उपस्थिति का एक दर्पण है, और इस दर्पण में हमारा नैतिक चरित्र, हमारी क्वालिटीज, डिवाइन वैल्यूज, डिवाइन पावर्स प्रतिबिंबित होते हैं। हमारे ट्रेडिशनल रिचुअल्स, हमारे कस्टम्स, हमारे संस्कार, ये सब प्रतिबिंबित होते हैं उस दर्पण में। और ऐसा ही समाज बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार अध्यात्म जो मनुष्य में चेतना जागृत करता है, उसको डिवाइन वैल्यूज से भरपूर करता है, उसके प्राकृतिक गुणों को जागृत करता है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, दिव्यता, पवित्रता, प्रकाश, ज्ञान, ये सब हमारी नेचुरल क्वालिटीज हैं। इन सबको जो जागृत करता है, शब्द जागृत है अर्थात वो सोए हुए हैं, इन गुणों का कभी नाश नहीं होता। ये गुण शाश्वत हैं, अजेय हैं, अपराजित हैं, किंतु समय का कालचक्र रहता है जिसमें ये लुप्त होते हैं, विलुप्त नहीं होते। और ये गुण प्रेम प्यार ये मनुष्य के को कर्म बंधनों से मुक्त करके संबंध स्थापित करते हैं। यह प्रकाश हमें अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय उपनिषदों में कहा है, कल ऑनरेबल जस्टिस पटनायक साहब ने भी यह बात कही थी। तो इन गुणों को हम कैसे, इन गुणों को प्रकाश को ध्यान में रखते हुए कैसे समाज का संगठन करें और कैसे हमारे लोकल लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का निर्माण करें और कैसे प्रत्येक इकाई, चाहे वो एडवोकेट हो जाए, जज हो, स्थिरचित और सशक्त बने ताकि उसकी वेदना हर किसी को झेलना नहीं पड़े। मैं तो कहूं कि ऐसे कानून बनाना चाहिए हम लोगों को जिसका इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़े, सारे झंझट ही इंटरप्रिटेशन का है, हम रोज अपना दृष्टिकोण बदल देते हैं। ऐसे कानून बनाए हम जिसके इंटरप्रिटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा पढ़ो और सीधा सीधा आंसर। और उसके लिए मेरा मानना है कि अध्यात्म ही एकमात्र आधार है, बिना उसके ये सब कुछ संभव ही नहीं है। हम जब अध्यात्म की बात करते हैं, अगर इन तीनों तत्वों में सामंजस्य नहीं होगा, समाज में यदि आध्यात्मिकता के आधार पर नैतिकता नहीं होगी, चरित्र नहीं होगा, हमारे डिवाइन वैल्यूज और डिवाइन पावर्स नहीं होंगे, डिवाइन क्वालिटीज नहीं होगी, तो हम कितने ही कानून बना दें, कोई भी समाज अनुशासनात्मक ढंग से उनका पालन नहीं करेगा जो आज हमको दिखाई देता है। हम और कठोर कानून बनाएंगे और कठोरता से उसका उल्लंघन होगा। आज जनता ये देखती है कि इनको बनाने दे कानून, हम उसके पहले रास्ता निकाल लेंगे, उसमें हम लोग भी मदद करते हैं कि कहां इसको बीच कैसे कर सकते हैं। और ऐसी यदि स्थिति बनती है तो सारा समाज डगमगा जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, उद्दंडता अपराध बढ़ने लगते हैं। इसलिए इन कानूनों को बनाने के पीछे अध्यात्म की महत्ती भूमिका हम निभाएं। और यदि केवल अध्यात्म रहा और हमने अपने समाज के ट्रेडिशनल रिचुअल्स को ध्यान में नहीं रखा, समाज की इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखा, उस अनुसार लोकल लॉज नहीं बनाए, तो भी गड़बड़ हो जाएगी, तभी अनुशासनहीनता रहेगी। इसलिए इन तीनों का बैलेंस बहुत आवश्यक है। और अध्यात्म हमें सिखाता है कि तुम कौन हो। एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद को खुद से मुलाकात कर ली, जिसने खुद से खुद की मुलाकात कर ली। हम एक ऐसा समाज चाहते हैं कि जहां हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। हाथों में एक शायर हुए इंदौरी, शायर इंदौर के हैं अभी वो, ही इज नो मोर, उन्होंने लिखा है शेर कि हमें हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए, और दुश्मन भी हो तो खानदानी चाहिए। हमारे बीच बहुत विद्वान वक्तागण हैं, हमारी एक से एक बहनें और भाई लोग बहुत श्रेष्ठ वक्तव्य प्रस्तुत करने वाले हैं, और हम सब इसी इच्छा और लालसा से यहां बैठे हैं कि हम आपसे मार्गदर्शन लें। इसलिए इस विषय को आप सब से अनुरोध है कि अच्छे से हाईलाइट करें और हमको मार्गदर्शन प्रदान करें। ब्रह्मा कुमारी की ओर से जो चार दिनों का शिविर लग रहा है, आप लोग अटेंड कर रहे हैं, उसका भरपूर लाभ लीजिए और उसको जीवन में जाकर के उतारने का प्रयास कीजिए। मेरा एक और निवेदन कि आपकी गली गली में, घर घर के पास पास, मोहल्लों में, शहर में, तहसीलों में, सब जगह ब्रह्मा कुमारी बहनें सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण की सेवा के लिए बैठी हुई हैं और निशुल्क सेवा प्रदान करती हैं। समय भी आपकी सुविधा अनुसार जो आपको उचित लगे वो समय अपॉइंट करिए बहनों से, और आप इनका एक छोटी सी फिलॉसफी है जो 7 दिन के अंदर वो समझा दी जाती है, श्रीमद भगवद गीता का विशुद्ध ज्ञान है जो राजयोग सिखाता है, उसको सीखिए, जीवन में धारण करिए। और मैं चाहता हूं कि आने वाला समय कहे कि इस ऐश्वर्य दरबार में आप जो सब हम बैठे हैं, इन्होंने ही एक नया दृष्टिकोण, नई दिशा इस समाज को दी है। आप सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू वेरी मच, ओम शांति।
बहुत 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 धन्यवाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीडी राठे जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त में विषय को भी हमारे सामने प्रस्तुत किया, क्या विषय है, और हमारा स्वागत भी किया शब्द सुमन द्वारा, आपका फिर से एक बार धन्यवाद। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो ये विषय है लॉ सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी और बैलेंस पर्सपेक्टिव, तो ये विषय किस लिए रखा गया है, उसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, इसके बारे में हमें डॉक्टर रश्मि ओझा बहन जी बताएंगे। रश्मि ओझा बहन जी के लिए मुझे ऐसा लगता है आप बहुत वेल क्वालिफाइड है और आपके पास बहुत इंटरनेशनल लेवल पे आप सब्जेक्ट भाषण करते हैं और बहुत अप्रिसिएट किया जाता है, तो आपके लिए जैसे ये कहावत बनी है विद्या विनयन शोभते, जितनी ही आप विद्यावान हैं उतनी ही आप विनम्र भी हैं, और आप विधि की रश्मि फैलाती है और आध्यात्मिकता की ओज से जगमगाती है। उनको ये घमंड इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये परमात्मा की देन है, भले मेहनत हमें करनी है लेकिन ये विशेषताएं जो मिलती है वो हमें परमात्मा से मिलती है, इसका आपको पूरा पूरा ज्ञान है। आप बाल्यावस्था से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आप लॉ की प्रोफेसर रही है और आप PhD गाइड भी रही है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आप कई बार कई पेपर्स प्रेजेंटेशन आपने किए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कई बार आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, तो आपकी कई सारी विशेषताएं जो हम बाद में सुनेंगे जब इनका हमारे लिए एक स्पेशल सेशन है। तो अभी मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रश्मि ओझा बहन जी, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग है, तो आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे।
सुप्रीम गॉड फादर शिव बाबा, हमारी अति आदरणीय सुदेश दीदी जी, ऑनरेबल जस्टिस रेड्डी सर, जस्टिस सतपति सर, जस्टिस पटनायक सर, ब्रदर रमेश जी, ब्रदर हितेंद्र भाई, हमारी जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन सिस्टर पुष्पा दीदी जी, वाइस चेयरपर्सन जस्टिस बीडी राठी सर जो कि हमारे पेट्रन मेंबर भी है, हमारे जूरिस्ट विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर लता दीदी जी, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर सिस्टर श्रद्धा बहन जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर नथमल भाई जी, ऑनरेबल जजेस, ऑल दी एस्टीम्ड पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट हियर, ओम शांति एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। क्योंकि अभी 12 पूरे बज नहीं चुके हैं इसलिए आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड टू एवरी वन। आज 30 मई है, इट्स 30th May 2025, और 30 मई एक सिग्निफिकेंट डे है। 30 मई इज मार्क्ड बाय संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, पीस कीपर्स, और वो उनके लिए डेडिकेट किया जाता है टू ऑनर दोज पीपल जो कि शहीद हो गए हैं यूनाइटेड नेशंस फ्लैग के लिए, और एंड दे वर इनटू एक्टिव यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस। तो हम देखते हैं कि पूरे यूनिवर्सल लेवल पे पीस यानी कि शांति के लिए कितनी मेहनत की जाती है, चाहे स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, चाहे यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से, चाहे कानून के माध्यम से, एंड इट इज सो वेरी रेलेवेंट इवन टुडे। इस कॉन्फ्रेंस का थीम है लॉ सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। कभी हम लॉ सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी ये तीनों चीज में बैलेंस कर सकते हैं, यह प्रश्न मेरे मन में उठा था, यह प्रश्न आप में से भी किसी कई लोगों के मन में उठता होगा कि लॉ एंड सोसाइटी वन कैन अंडरस्टैंड, लेकिन लॉ सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं। अभी अभी कुछ देर पहले आपने सिस्टर शिवानी बहन की बहुत अच्छी अच्छी वाक्य सुने, उनके थॉट सुने कि स्पिरिचुअलिटी का हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में कितना महत्व है। तो एक किसी यूथ ने, छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल अब टीनेज हो रहा था, उसने अपने टीचर जो कि बहुत ही विद्वान थे उनसे पूछा कि मैं किस फील्ड में अपना कैरियर बनाऊं ताकि मैं प्रॉस्पर हो सकूं, ताकि मुझे फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो टीचर ने कहा कि सबसे अच्छा कैरियर तुम एक अच्छे इंसान बन के कर सकते हो, बिकॉज इन बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग देर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और उसमें बहुत ही कम कॉम्पिटिशन है। तो एक अच्छा इंसान बनना या बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट कैरियर दैट यू कैन चूज बिफोर चूजिंग एनी अदर कैरियर इन योर लाइफ। तो स्पिरिचुअलिटी, हाउ कैन वन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज हम जब वैल्यूज इम्बाइब करते हैं। आ गए हमारे बीच में जस्टिस रेड्डी सर पहुंच गए हैं। मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ बीके से अनुरोध करूंगी कि वो उनको मंच पे एस्कॉर्ट करके लाए और बिठा दे। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। बीके बहनों से अनुरोध है कि वह प्लांट और बैच और तिलक से हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत करें। गिव अ बिग अप्लॉड टू द वेलकम ऑफ अवर जस्टिस रेड्डी सर। सर, ऑन बिहाफ ऑफ द जूरिस्ट विंग ऑफ द राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, we extend a very very warm welcome to you sir, and thanks for your gracious presence sir. So I was addressing on the aims and objectives of the conference, which is based on the theme law, society and spirituality, aur kis tarah se hum iska blend kar sakte, kanoon hum kanoon padhkar kar sakte, society mein hum sab reh rahe hai, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कंपोनेंट हमें कैसे काम आता है। तो ये उदाहरण शायद हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है कि हाउ द वैल्यूज इम्बाइब्ड विद इन द प्रोफेशन कैन मेक अ बेटर सोसाइटी टू लिव। अभी 26 ऑफ मई 2025 में, जस्ट चार दिन पहले, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक 7 महीने का कोर्स शुरू किया है, दैट्स द रेलेवेंस ऑफ भगवद गीता इन इंडियन लीगल सिस्टम। और ये इंडियन यूनिवर्सिटीज का सबसे पहला महत्व का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कमेंसमेंट, कि भगवद गीता का इंडियन लीगल सिस्टम से क्या लेना देना है एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ भगवद गीता इन द इंडियन लीगल सिस्टम। इसका 7 महीने का कोर्स अभी 4 दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने इनिशिएटिव लिया है, और इस बात पर से यह सिद्ध हो जाता है कि स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू कितनी इंडियन लीगल सिस्टम में भी है एंड इन द लॉ एंड सोसाइटी। जब ये बात होती है तो मुझे याद आते हैं एक फेमस अमेरिकन सोशियोलॉजिकल, द फादर हु वॉज ट्रीटेड एज द फादर ऑफ अमेरिकन सोशल जूरिस्प्रूडेंस, उनका नाम डीन रॉस्कोपॉन था। ही प्रोपाउंडेड अ थ्योरी ऑन सोशल इंजीनियरिंग एंड द थ्योरी इन शॉर्ट स्टेट्स दैट वी शुड हैव सच अ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी दैट विल सैटिस्फाई मैक्सिमम बॉन्ड्स विथ मिनिमम फ्रिक्शन और वेस्ट। हमारे समाज में हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, कानून भी ऐसे होने हैं that will satisfy maximum wants with the minimum friction or waste, ताकि सभी की भलाई हो। If this be so, तो हम देख सकते हैं कि बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी ऐसे ऐसे नए नए कानून, इंक्लूडिंग द लास्ट डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, काफी सारे कानून निकले, लेकिन उसमें सोसाइटी में जो बदलाव होना है उसका हम अभी भी वी आर वांटिंग दैट समथिंग इज अ मिसिंग डायमेंशन एंड आई एम श्योर स्पिरिचुअल वैल्यूज इज अ मिसिंग डायमेंशन। एक और दृष्टांत मुझे याद आता है कि जब हम समाज की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, तो वैल्यूज का महत्व कितना है। जरूरी नहीं है कि हम सब एज अ लॉयर्स वैल्यूज, अगर हम बचपन से ही, जैसे सिस्टर शिवानी दीदी ने कहा कि एवरी लॉ स्कूल मस्ट स्टार्ट दिस कोर्स, तो अगर बचपन से ही अगर हम स्कूल से स्टार्ट करें, तो एक कहानी याद आती है स्कॉटलैंड में जब मिशनरी मीटिंग हुई थी एंड वो लोग कलेक्शंस डोनेशंस कलेक्ट कर रहे थे एंड उसमें सभी के पास से ताकि वो गरीबों को बांट सके एंड देर वॉज अ 10-year-old बॉय एलेक्जेंडर डफ और वो हाथ जोड़ के खड़ा था वहां। जब वो बास्केट मूव किया गया, सभी अपने डोनेशंस बास्केट में डालते थे, जब वो बच्चे के पास पहुंचे तो द बॉय सेड सर इवन आई वॉन्ट टू डोनेट। तो जिसने बास्केट पकड़ रखा था उसने कहा ये छोटा सा 10 साल का बच्चा क्या डोनेट करेगा, तो फिर भी उसको खुश रखने के लिए उसने कहा कि ठीक है डोनेट व्हाट यू वांट टू। तो वो बच्चे ने कहा सर प्लीज आपका बास्केट नीचे कीजिए क्योंकि मैं ऊपर से देख नहीं सकता हूँ, मैं छोटा हूँ तो ऊपर से पहुंच नहीं पा रहा हूँ। तो उसने उसकी खुशी के लिए बास्केट जमीन पर रख दिया, वो बच्चे ने दोनों हाथ जोड़े, वो बास्केट के अंदर बैठ गया और उसने कहा कि सर आई डोंट हैव एनीथिंग टू डोनेट एंड देयरफॉर आई डोनेट माय ओन सेल्फ फॉर द नोबल कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब यह भावना, दिस पर्टिकुलर थॉट कैन कम ओनली इन अ स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन, दिस इज नॉट बीइंग टॉट इन द स्कूल, इट कांट बी टॉट इन द लॉ कॉलेजेस, इट कांट बी टॉट इन द यूनिवर्सिटीज, इट हैज टू बी इम्बाइब्ड टू द स्टूडेंट्स, इट हैज टू कम ऑन इट्स ओर और इट हैज टू बी इनकल्केटेड और इम्बाइब्ड विद इन देम। ये चर्चा, ये डिबेट, ये कंटेंशंस कई साल पुराने हैं और मुझे याद आता है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी, उनकी बुक किताब थी एक द विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही पढ़ने लायक है, टेक्निकल बुक है द विंग्स ऑफ फायर। उसमें उसने कई नैरेटिव्स लिखे हैं उनके इसरो के साथ, क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्या हुआ क्या नहीं, राइट फ्रॉम द स्टेज जब वो रामेश्वरम स्टेशन पे न्यूज़पेपर छोटे थे और बेचते थे, तब से लेके उनकी जर्नी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक रही तब तक, एंड ही बिकेम अ लीडिंग साइंटिस्ट। तो उन्होंने उस किताब में लिखा है कि देर इज अ डेफिनेट नेक्सस और रेलेवेंस बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, उसी तरह बिटवीन लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि एक बार जब महात्मा गांधी जी थे तो वो और एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिस्टर हिगिनबॉथम दोनों बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे, तो द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हिगिनबॉथम बोले कि लुक गांधी जी, स्पिरिचुअलिटी इन ऑर्डर टू बी मीनिंगफुल शुड बी 3/4 ऑफ इकोनॉमिक्स। तुरंत ही महात्मा गांधी जी के मुंह से शब्द निकल गए कि इकोनॉमिक्स इन ऑर्डर टू बी यूजफुल शुड बी एटलीस्ट 3/4 स्पिरिचुअलिटी। तो हम देख सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का महत्व हमारी डे टू डे लाइफ में कितना है। मार्क ट्वेन ने कई साल पहले कहा था कि इट्स बाय द गुडनेस ऑफ गॉड दैट वी हैव दिस 3 अनस्पीकेबल टर्म्स। One is the three freedoms. One is the freedom of speech, freedom of expression and the prudence never to practice either of them. हमारे पास है बहुत कुछ लेकिन हम प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। आज के इस युग में जहां हम एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी स्टूडेंट थी हमारे पास ऐसा कोई मोबाइल जैसा डिवाइस होगा जिसे हम वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था, आज वो भी हो गया। मेडिसिन हैज एडवांस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांसमेंट्स हुई है, रोबोटिक सर्जरीज हो रही है, रोबोट्स घर के काम कर रहे हैं, रोबोट्स बाकी के भी डिसीजंस ले रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम में भी आ रहे हैं, लेकिन एज सिस्टर शिवानी सेड कि इट कैन नेवर बी अ सब्स्टिट्यूट टू ह्यूमन इमोशंस, इट कैन नेवर बी अ सब्स्टिट्यूट टू ह्यूमन ब्रेन एज सच, क्योंकि वो एक ऑपरेटिव सिस्टम है जहां हम जो डेटा फीड करते ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो हमें रिजल्ट देते हैं. बट दिस और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजेस ने अपने वक्तव्य में कहा है कि दिस कांट बी अ सब्स्टिट्यूट टू द ह्यूमन ब्रेन एंड इमोशंस. तो स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस हम सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं. वी ह्यूमन बींग्स कैन ओनली डू दिस. हमारी जूरिस्ट विंग ब्रह्मा कुमारी की 21 विंग्स में से एक बहुत ही इफेक्टिव विंग्स है. हमारे काफी सारे थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स है ये जूरिस्ट विंग के, और लगातार हमारा यही प्रयत्न रहा है कि इन एवरी सच कॉन्फ्रेंस सेमिनार सिंपोजिया वी ट्राई टू फॉस्टर द आइडियल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी व्हाट बाबा हैज टॉट अस एंड वी ब्रिंग इट इन टू प्रैक्टिस इन द इंडियन लीगल सिस्टम इन द जस्टिस डिस्पेंसेशन प्रोसेस एज सच एंड द रिजल्ट आर एक्सिलेंट. जस्टिस लेट जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर जी हमारे फर्स्ट पेट्रन मेंबर रहे हैं और उन्होंने हमारी विंग को ऊपर लाने में उनका काफी महत्व का योगदान रहा है एंड वी स्टिल देयरफॉर रिमेंबर हिम फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर दिस विंग. ही हैज स्पोकन वेरी हाई अबाउट द जूरिस्ट विंग ऑफ द राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन. जैसे जस्टिस राठी सर ने आप सभी से कहा कि इस तीन दिन की कॉन्फ्रेंस में हमारे सीनियर राजयोगा टीचर्स, हमारे काफी सारे एमिनेंट स्पीकर्स है, जजेस है, लॉयर्स है, उनसे हम कहीं कुछ काफी सारा नॉलेज लेंगे. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि ये तीन दिन का सेशंस में से एक भी सेशन आप मिस ना करते हुए मेक द मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ हाउ यू कैन हैव अ कंप्लीट ब्लेंड ऑफ law, society and spirituality and how we can focus it with a balanced perspective, how three can simultaneously exist with exclusion of none of the three components as such. बाकी विशेष शाम को 5 बजे मेरा सेशन है, उसमें ज्यादा वक्त है तो उसमें अपने कुछ सुझाव और विचार रखूंगी. थैंक यू. ओम शांति.
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि ओझा बहन जी, आपने बहुत अच्छे से इस कॉन्फ्रेंस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किए. अभी हम इस कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन करते हैं और मैं भाइयों से निवेदन करती हूँ कैंडल स्टैंड लेके आए, और हमारे मंचासीन मेहमानों से निवेदन है कि वे सभी आगे आए और इस सत्र का उद्घाटन करेंगे. ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी जी, आप भाइयों से निवेदन है आप हमारे गेस्ट को एस्कॉर्ट करें. ये उद्घाटन हमें याद दिलाता है कि हम किस कर्तव्य के लिए हैं, हमें यहाँ पर आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त करते हुए कैसे अपने दीपक को, आत्मारूपी दीपक को जगाना है और अपने साथ साथ अन्य विश्व की अन्य आत्माओं के भी जीवन को एनलाइटन करना है अपनी आध्यात्मिकता से. आप सभी से निवेदन है आप सभी खड़े होंगे और अपनी मोबाइल टॉर्च जलाएंगे और कैंडल लाइटिंग के लिए मैं मेहमान से हॉल में बैठे हुए मेहमानों को आमंत्रित करती हूँ. जोगिंदर सिंह जी CFO हीरो मोटर एंटरप्राइजेस, जोगिंदर सिंह जी और ब्रदर विजय दास जी प्रेसिडेंट ओरिसा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, आप कृपया मंच पर आए और दीप प्रज्वलन में सहयोग दें. ब्रदर विजय कुमार दास एंड ब्रदर जोगिंदर सिंह जी,
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
उद्घाटन के बाद में इनॉग्रल स्पीच डिलीवर करने के लिए ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी जी से निवेदन करती हूं कि आप अपना इनॉग्रल स्पीच डिलीवर करें। आपके लिए थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दूंगी। आप ही वॉज अवॉर्डेड बाय गोल्ड मेडल इन लॉ। ही हैज स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस इन आंध्र प्रदेश सिंस इन अप्रैल 1985। He has widely practiced in taxation, civil, criminal, constitutional, in appellate side, original side in the High Court. And he was senior standing counsel for central government in the year 2004, which was redesignated as assistant solicitor general of India in the year 2005. He continued as assistant solicitor general till 2009. He has also appointed as standing counsel for Central Excise, Custom and Service Tax. He was designated as senior counsel by High Court of Andhra Pradesh in the year 2012. And he was also a counsel for Software Technology Parks of India, National Construction Corporation and BSNL. His personal interest is in music, especially old songs. He was elevated as additional judge of the High Court of Andhra Pradesh and sworn on 12th April 2013, appointed as judge of High Court of Judicature at Hyderabad for the state of Telangana, state of Andhra Pradesh also, and his lordship retired on 3rd of May 2022, and now he is the Lokayukta for the state of Telangana, Hyderabad. कहा जाता है कि the good of the people is greatest law and aim of justice is to give everyone his due. सिसेरो ने कहा है। तो ऑनरेबल ब्रदर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रेड्डी जी हैज बीन फॉलोइंग दिस मैक्सिम ऑल थ्रू हिज लाइफ एंड नाउ आई रिक्वेस्ट हिम टू डिलीवर हिज इनॉग्रल स्पीच। अनाउंसमेंट है, आपको जो भी बॉटल्स और टोली के पैकेट दिए हैं वो नीचे ना फेंके, वो आपके पास ही रखें और बाहर जाते टाइम बॉक्स में डालेंगे। प्लीज सहयोग दीजिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड अपोलोजी फॉर यू बिकॉज आई ज्वाइंड इन द मिडस्ट ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज ऑफ लिटिल बिट थ्रोट इन्फेक्शन। आई वॉज देर इन द मॉर्निंग, आई वॉन्टेड टू स्किप मॉर्निंग सेशन एंड अटेंड द सेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, बट यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टर वीका शिवानी सीइंग इन पर्सन। आई फॉलो अवर speeches through YouTube and also I read her books, so I didn't feel it like keeping morning session. My esteemed brothers on the dais, distinguished personalities on the dais and off the dais, my dear lawyers and former judges, good souls, brothers and sisters, and the staff of Brahma Kumaris, really it is homecoming for me, because I lived in law for 43 years and still living in law. 3 years I have done law, and almost in the as a judge and a lawyer 37 years, and after that also I was doing arbitration for 2 years. Later I was chairman of the Real Estate Appellate Tribunal, Telangana, and now Lokayukta, all related to law. So I can say I lived in law. So it's homecoming whenever any subject or to be present in the midst of lawyers or judges, whether it is their private functions or whether it is public function. I feel like homecoming, and I am always enriched by their knowledge when their counsels appear before me and when they interact with me. And this is a subject I do not know for the last 10 years. I was Babu, but I didn't know, somehow every time it got mixed. As Sister Sivani ji in the morning said, because we are busy. It is not that busy, prioritization. Because I thought law, it means only law, purely law. As a lawyer, I used to read briefs, I should read bare texts and interpret the law and do justice to my client only. As a judge also, I thought that law is only simply interpretation of texts enacted by legislatures and go according to spirit of the law. I didn't know much about spirituality, and as I am part of society, you know very well that what is going on in society reflects upon us. So one of the former judges of Supreme Court, Justice Singhvi ji, who was Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court at that relevant time, he used to say, we members of the legal fraternity, that is lawyers and judges, we all need to deal with the negativity. No happy man comes to the court. Person with litigation comes to the court, and other side also is involved in litigation. He may be happy, but the moment the case is filed, he will also be in trouble. So full of negativity. So he used to say, first you should protect ourselves. As Sister Sivani ji in the morning said, our emotional quotient should be very high. Because already we should create an atmosphere in the court. Sometimes we see the interaction between judges and lawyers, and between both lawyers. I think many of them are related to law who are present here. Many of them lawyers are related to lawyers. So we see in the court scenes what happens. Courts are supposed to be temples of justice. So when we go to temple, we want a very, very serene atmosphere. So with the moment our vibration, when we go to temple, we feel that serenity is there. Some peace we want, we go to temples, why? It is peaceful. So when people come to the court for resolution of the disputes, the moment they step into the court, they should have that feeling of serenity in the court. It's also temple, that's why it's called temple of justice. That's why a temple, it is almost like a temple, because people should have confidence when they step into the courts that justice will be done. And while we're dealing with negativity, our what you call emotional quotient, emotionally we should be in higher plane. And our experience, because I was also a client before becoming lawyer, I also visited lawyer's office. When lawyers are with flow, because when many negative people come, they're negative with all litigation, sometimes they are also, their emotional quotient is very low. And the dealing with the client also sometimes, you know, not intentionally. Even judges also, when they sit on the bench, sometimes they become emotional. Not that they are bad lawyers, but because we deal with the negativity, sometimes we are also, our level also comes down. So to build up that spirituality, I thought spiritual discourses, spiritual conferences, dealing related with law. And the society requires law and also spirituality. In the morning, Sister Shivaniji was telling, when some client comes to you, you know 100% that there is no case, and you know 100% he has committed an offence. When you take up that case, as per professional ethics, you are supposed to defend. And whatever benefit is available under law, you should give to him. But if it comes to spirituality, when you know 100% that person has committed an offence, spirituality says you can't. That is the difference. Nobody can file a suit against you saying, asking injunction that you should not appear for that such a person. But we can distinguish between both. Because it has happened in my life. In my nearby village, a murder took place. And I know both of them. The person who has committed murder was earlier my client. A person who is murdered is my relative. Both of them I know. And when I seen the first information report, there was no evidence at all. We are sure to get the bail. But when it came to me, it took me one day whether to appear or not. He was old client and other things. I knew that person has committed the offence. Not from newspaper reports. Sometimes when we read newspaper reports, we feel that everything is committed. But from my own sources, I came to know that they committed. But it took me one day to think over whether to accept the brief or not. I didn't accept the brief. So, but that spirituality, between good and spirituality says good and bad. Law says according to law. Due process of law. For example, debt. According to Hindu Shastra and others, debt is a debt. Even if you go to heaven, everything, hell or, unless your successors clear it. But whereas law says after 3 years is no debtor. It can't be enforced. That is the difference between law and spirituality. A spirituality says always debt is a debt. So certain things, because both are interlinked, and you know that law, how law is framed initially in ancient society, as Sister Shivaniji said that, Satyug, there was no need of any law, a lawyer, a judge, a policeman. Gradually, and continuously, there is no codified law, but only thing is what is good and bad. Scholars, kings used to say this is law. Good or bad, they used to this bad and punish that. That means there was no law, but the punishment used to be as per spirituality. If one feels that according to spirituality is good or bad, if it is bad, they used to punish. Later, the customs, traditions developed, and they used to follow in marriages, other things, they used to follow the tradition, same thing. Whether at the time of marriage or at the time of divorce, they used to follow the traditions. There was no such thing. Later we found that is also not effective. Why? Because we are going down. From Satyayug to Tretayug, like that we came to Kali. We required codified law. So we had elected representatives and they enact law. And it is presumed that legislatures know what society requires. Law is nothing but common sense and also what society requires. Because law is not static. Every time it goes on changing. That's why the old laws are repealed. New laws are enacted. The purpose is what society requires. If many of the members of society, what is society? Association of human beings. And they require, from them the legislators come. And from their feelings the legislators know the society requires this one. Why law is required? Because to protect individual rights and also individuals against society and society against individuals. So this goes on a process. That's why we go on and the parliament and state legislatures go on enacting laws. We don't feel that this, all right, so many laws are enacted, they are sufficient. day in and day out they require, because society goes on changing needs. How the society changes needs and industrialization, so many things happen. So this law, society and spirituality are interlinked. And this is a very good topic selected for this conference. Like science and religion, spirituality is linked to every aspect of life. So now, when we are in the last part of this Kali Yuga, that is more relevant. In Satya Yuga, I think nobody talked about spirituality. Whatever they talked, it is spirituality. Now we have to have special classes, because when we studied, when we were in the school, we had moral science. Now people, they have, I think that subject is scrapped. So remember, I do not know if any of the states or any of the parents sitting here, their children have their subject, morality. Moral science, that is nothing but related to spirituality only. So people only thought mathematics and science, because engineers, if you become engineer and doctor, chartered accountant, lawyer, that is sufficient. Now as Sister Shivani, she said in the morning, that subject not only is required to be taught at law schools, but in this, from the primary schools itself, we should have a subject. And every week, that soul, young soul, good soul has to be developed, what we call that teaching every continuously. The young brain and young minds, they grasp everything, because in even see cell phones, the young children, they what we call, immediately within 2 seconds, they see the cell phone and they start operating. Sometimes they operate better than us. So they can observe from schools itself, whatever the subject is called, relating to spirituality, moral science or whatever it is, it should be imbibed in their character right from the beginning. Not only in law field, in every other branch of law, because I was appearing for government, several governmental organizations also, very good officers, they will be under a lot of stress and strain because of personal problems and also office problems. Unless you are cool and calm and your emotional well-being, you are above, because for any, whether it is a collector who is in a civil service servant or a scientist and you are in a public office, you will be under a lot of tremendous pressure. So that you should be able to handle first. If you are cool and calm, if your emotional quotient is on a higher level, it gets depleted by evening. In the morning, as a judge, we used to sit here as a lawyer. When we go to the court in the morning, we used to feel very fresh. By the time it is evening, you know, we get depleted, discharged. So, but many of us feel that when we attend conferences, I also used to feel like when we attend conference yearly or read a book on spirituality, that is sufficient. So in the morning, similarly, when I heard a speech of Sister Shivani ji and also Vasant sister and Ramesh, the present district judge who is on dais, because for the last 2-3 years I am regularly attending the conferences and other meetings in the Prima Kumari Shanti Sarovar in Hyderabad. So by that I learned that every branch of every subject, not only law, science, medicine, because doctors are also in the tremendous pressure, because nowadays sometimes I used to attend this what you call doctor's day as a chief guest. I said, doctors, you should have a lot of patients. Not only treat the patients, but it should appear that you have treated them well. Like justice is not only done, it should appear to be done. Because that's why consumer cases are being filed against doctors, because not that they are not performing well. But the moment doctor sees and speaks to the patient, he feels comfortable. And after that, whether you operate, whether you prescribe medicines, if they feel comfortable, if they are after treatment, because on the operation theater itself, they write, God, we dress the wound, God heals the wound. So it is not there in their hands, but the patient feels satisfied. And even if there is a failure also, you will be safe, because they feel that you have done your duty and you have done your job. Likewise, the lawyers also, I have attended many lawyers' offices before becoming a lawyer for my personal cases. I have seen somebody speaks, we feel that half of our problem is solved. So that is the vibration we create. So with the negativity, lot of heartburn they come. When litigation, when it comes to lawyer, they should feel that their our problem is solved. And they should confidence, have confidence that this lawyer is a lawyer who can deal with their problems, get justice. Likewise, when in the court, judges also should emotionally be very strong. Emotionally very strong. Otherwise, very difficult. Because before becoming a judge, I say that exercise or anything as a lawyer, because we used to move around and around the courts. But after becoming a judge, after 1 year, I felt that my emotional being is not sufficient. So I started doing this from pranayama. But I didn't start meditation. With that yoga and pranayama, I used to manage for 10 years. So after that, I felt that I should have gone for the meditation. It is nothing but part of spiritual exercise, meditation. So this is importance. So we should not, as a lawyer, as a judges, feel that academically we are very brilliant. By heart we know the constitution. By heart we know the criminal laws. By heart we know every judgment of Supreme Court and other high courts. That is not sufficient. We should be strong. Because our votes count a lot. When we have compassion, judges compassion, and sympathy towards the litigant public, a lot of difference. So I think there are other speakers, and especially because even I also have some throat infection, and I have not told that I have to speak here. I thought I can come and sit, enjoy the speeches of others. After coming here only, I am told that I have to speak on the occasion. But this being my subject, whatever is what you call my experience, I have shared with you. Thank you, one and all.
Thank you very much, Honorable Mr. Justice Rajshekhar Reddy ji. आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे आध्यात्मिकता, प्राणायाम, योगा सब हमको स्वस्थ रखते हैं, और इमोशनल क्वोशेंट हमारा अगर ठीक है तो हम दुनिया भर के सभी नेगेटिविटीज को डील कर सकते हैं। अभी मैं हूँ आज के इस सत्र को आशीर्वचन देने के लिए हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी। आप वर्तमान में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, और आप सीनियर डायरेक्टर इस एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड की है जहां हम रह रहे हैं। आप विगत 65 वर्षों से भी अधिक समय से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। अथाह ज्ञान का भंडार है, या यूं कहे कि आप ज्ञान का एक सागर है, इतना ज्ञान है आप में। और जब आप बोलते हैं तो जैसे ज्ञान के मोती झरते हैं और हमें संपन्न बनाते हैं। आप यूरोपियन डायरेक्टर करके भी आपने सेवाएं संभाली हैं। जर्मनी में आपने काफी समय तक सेवाएं दी, और बाद में हमारा यूरोप का एरिया जो है उसके भी डायरेक्टर रहे हैं। और 2018 में आपको लंदन में संसद भवन में भारत गौरव पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो आपके लिए मैं दो लाइनें कहूंगी, क्योंकि आपने विदेश में काफी सेवाएं की जब कुछ भी नहीं था विदेश में। दुर्गम जीवन के रस्ते पग पग पर कांटे चुभते, थी दिशाहीन मानवता, दानवता में थे पलते, पथ सुगम बनाया आपने, आपकी महिमा गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। तो ऐसे विदेश के सारी आत्माओं के आपने जीवन सुगम बनाया है, ऐसी हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी। फिर से करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे दीदी जी, और दीदी जी हमें आशीर्वचन देंगे।
ओम शांति, ओम शांति। मंच पर विराजमान मेरे सभी भाई, एक एक का नाम लूं या ये कहूं कि हीरों के हार को नमस्कार, क्योंकि एक एक हीरा है, एक एक हर एक की अपनी विशेषता है, और हर एक ने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है, अभ्यास किया है, कर्तव्य किया है। और साथ में सामने बैठे हुए मेरे बहनों और भाइयों, मेरा परिवार है, आप मेहमान नहीं है, आप अपने घर में आए हैं। क्यों समाज का एक अंग नहीं परंतु समाज परिवार से बनता है, परिवार परिवार इकट्ठे होते हैं, सोसाइटी बन जाती है, समाज बन जाता है। और समाज सुधार चाहिए और समाज में रहते हुए हर एक को सुरक्षा चाहिए, नियम की आवश्यकता, कानून चाहिए। पर वास्तव में देखा जाए तो कानून की आवश्यकता कब पड़ी, लॉ कब बने? जब लॉलेसनेस है, जब भी कोई मर्यादा को तोड़ता है तो उसको मर्यादा को पावरफुल बनाने के लिए डबल कोई न कोई लॉ बनाया जाता है अथवा दंड दिया जाता है। जब जजमेंट है तो वास्तव में वो डिटैच है, साक्षी दृष्टा है, परंतु उसका आधार आध्यात्मिकता हर चीजों का सोल्यूशन है। नेचुरल लॉज, नेचुरल जीवन के लिए वास्तव में हर चीज परिवार से शुरू होती है। माँ बाप अपने बच्चों को जो सिखाते हैं या जैसा व्यवहार करते हैं उस अनुसार ही अपने घर की सभ्यता अथवा आपस में एक दो के साथ व्यवहार, स्नेह और सम्मान जागृत होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है गांव में एक बारी, पुराने जमाने में सब मिलके खाते थे, और ये तो इसी जमाने की बात है, हमारे होते ही बात है। तो एक बारी खिचड़ी बनी थी घर में और माँ ने घी डाल दिया। अब वो चार बच्चे बैठे थे, हर एक ने समझा घी मेरे पास आवे तो चम्मच से घी को अपनी तरफ खींचने लगे। माँ ने सोचा ये तो मेरा, मेरे को ज्यादा मिले दूसरे को कम मिले। माँ ने उठाई चम्मच और घी को मिक्स कर दिया, सबको बराबर घी मिल गया। तो मेरा अपन एक्चुअली भाव क्या है कि जहां स्वार्थ होता है, जहां मैं पहले अपने आप को देखता हूं तो दूसरे की विशेषता को, आवश्यकता को, सुविधा को, सुख को नहीं देखता हूं। और आज समाज अथवा संसार में जो परिस्थिति है उसका कारण स्वार्थ है। और स्वार्थ में वास्तव में आध्यात्मिकता का सही अर्थ समझने से स्वार्थ पॉजिटिव बन जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है कि स्वयं अर्थ, स्वयं के अर्थ स्वरूप में आध्यात्मिकता के असली भाव में जब हम स्थित हो जाते हैं तो संभावना जागृत होती है और एक तो के प्रति प्रेम, सत्यता और विश्वास जागृत होता है। जहां पर प्रेम, सत्यता और विश्वास है वहां लॉ को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि हर कोई नियम अगर पालन कर रहा है, अगर मालूम है कि हमको टिकट लेनी है और तब ट्रैवल करना है, 50 बारी या 10 बारी बिना टिकट के ट्रैवल किया तो फिर प्रकृति अपने आप इस परिस्थिति ऐसी आएगी जो एक बारी की टिकट 5 बारी नहीं लिया, 1 बारी नहीं ली तो 50 बार का पैसा देना पड़ेगा। चोरी कर ली कोई चीज तो नेचुरली उसके लिए अपनी जो रेस्पेक्ट है वो समाप्त हुई। परिवार के लिए का कारण बना, दुख संसार में बढ़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको समाज को सुधार के लिए या विश्व को सुंदर बनाने के लिए आध्यात्मिकता की अति आवश्यकता है। आध्यात्मिकता का मतलब मेरा ये नहीं है कि हम बैठ के पुस्तकें पढ़ें और दिन रात कथा कीर्तन करें। आध्यात्म है कि आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में अपनी असली वैल्यू को जाने, और हमेशा कहते हैं न्यायकारी परमात्मा है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, इंसान के घर में अंधेर ही अंधेर है, अंधकार है, अज्ञान है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है। तो आज जितना जितना विकार बढ़ते जाते हैं, अज्ञान बढ़ता चला जाता है, उतनी उतनी अशांति बढ़ती चली जाती है। चाणक्य की नीति के अनुसार शाम दाम मतलब शांति दाम अर्थ धन संपत्ति भेद और नीति और भेद पर पहली चीज क्या आई, शांति। वास्तव में समाज में सबसे पहली चीज है आत्मिक शांति। जब मन शांत है तो किसी भी चीज को समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए स्नेह से हम दूसरी आत्मा को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब मन में शांति है तो बुद्धि का निर्णय भी बड़ा दिव्यता से होता है। निर्णय शक्ति पार्शियल नहीं होती, निर्णय शक्ति साक्षी दृष्टा है स्वधर्म में। और फिर कर्म, इंद्रियों से जो कर्म होता है वो सुख देने वाला कर्म होता है, पुरस्कार देने वाला कर्म होता है, अच्छा कर्म होता है, ऑटोमेटिकली दुआएं भी मिलती हैं। और अगर क्षमा भाव है, प्रेम का भाव है, तो क्षमा एक ऐसी शक्ति है जिसमें लॉ की जरूरत नहीं होती है, शिक्षा ऑटोमेटिकली मिल जाती है, रियलाइजेशन होता है। परंतु मनुष्य आत्माओं में अभी देह अभिमान होने के कारण, विकारों का प्रभाव बढ़ने के कारण, बुद्धि में रियल लाइट जो आत्मा की होनी चाहिए और जो है वो नहीं है। इनॉग्रेशन में दीपक जगाए, ये दीपक तो जगेगा थोड़ी देर के लिए, रोशनी देगा। तो वास्तव में आध्यात्मिकता हमको बताती है कि हम किस प्रकार से नेचुरल रीति से मर्यादा संपन्न बने। मर्यादा को तोड़े नहीं, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का समय है। श्री रामचंद्र जी को मर्यादा थी, राम राज आज भी हम मांगते हैं, और गांधी जी की आज थी राज स्थापन करने की। परंतु हम जानते हैं स्वतंत्रता तो मिली परंतु रावण राज खत्म नहीं हुआ। विकारों का राज रावण राज, मेरा मतलब जहां विकारों का राज है, जहां कॉन्फ्लिक्ट है, 10 सिर रावण के, जहां मतभेद है। प्रवृत्ति तो वही है, घर प्रवृत्ति है, परंतु रावण के 10 सिर है। क्या मतलब है? कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, कंपैरिजन, डेफिमेशन, रिडक्शन, ये सब प्रकार की जो सिचुएशन जब आती है तो वास्तव में दोनों को नुकसान होता है। नारी को भी नुकसान है तो नर को भी नुकसान है, परिवार को भी नुकसान है, दुख और अशांति है। और श्री विष्णु जी के, लक्ष्मी और नारायण जी के 4 हाथ है, 1 सिर है, सिर 1 है, हाथ 4 है। नारी लक्ष्मी है, पुरुष नारायण है, तो उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। जहां हिंसा होती है वहां पर नेचुरली किसी भी प्रकार की हिंसा, हिंसा का मतलब सिर्फ किसी को कत्ल करने की बात नहीं, परंतु जहां आत्मा को दुख मिलता है, दुख देते हैं दुख लेते हैं, तो अपने आप को भी हिंसक, अपनी हिंसा भी कर रहे हैं और दूसरे की भी हिंसा कर रहे हैं, तो प्रकृति भी दंड देती है। प्राकृतिक लोग अपने आप ही दंड देने वाले बन जाते हैं। तो मर्यादा रूहानियत का मतलब, आध्यात्मिकता का मतलब है कि हम अपने आत्मिक गुणों को फिर से परिवार में लाएं, पहले अपने संस्कार में, अपने विचार में लाएं, अपनी आत्मा की जोत जगाएं। तो लाइट होगी हमारे पास तो रास्ता ठीक दिखाई पड़ेगा। अंधकार में भटकना होता है, लाइट में जंगल से भी सहज पार हो जाते हैं एक छोटी सी टॉर्च हाथ में है। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे अभी ऐसा समाज बनाना है, ऐसा संसार बनाना है जहां मैं आश्रम में खुशखबरी की बात सुनाती हूँ, वहां कोर्ट जजेस वकील नहीं होंगे, आपको ये जॉब नहीं करना पड़ेगा। या चाहिए जो वैसा चाहिए, क्या ऐसा जो ऐसा चाहिए जिसमें नेचुरल रीति से कहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, प्रेम की भावना है, एक दूसरे को ऑटोमेटिकली स्नेह से सहयोग दे रहे हैं, दिव्यता है। जब आध्यात्मिकता है तो क्षमा की भावना भी है और साथ साथ शिक्षा की भावना भी है। पर खाली दंड देकर या कानून से कंट्रोल करने से थोड़े समय का कंट्रोल होता है, परमानेंट परिवर्तन नहीं आता है। तो वास्तव में अगर हमको समाज को सुंदर और श्रेष्ठ बनाना है, संसार को दिव्य बनाना है, तो पहले अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करना है और आत्मा के अंदर ही शांति, प्रेम और पवित्रता है और डिसिप्लिन नेचुरल है। अगर देह का अभिमान है तो डिसिप्लिन की तो बात ही नहीं। विकारों का प्रभाव, आकर्षण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ, कल्याण की भावना नहीं रहती। तो अपने आप को जब हम ये रियलाइज करें, क्योंकि आपको साथ साथ ये राजयोग शिविर जो सवेरे कराते हैं, मैं समझती हूँ आप लोग अटेंड कर रहे हैं, उसमें ये सब डिटेल से समझाया जाएगा और समझाया जा भी रहा होगा। मैं भावना मेरी ये है कि आध्यात्मिकता फाउंडेशन है, आध्यात्मिकता सीड है, आध्यात्मिकता नए समाज की नींव है, जिससे हमारा जीवन दिव्य बनता है और एक दो के प्रति शुभ भावना जागृत होती है, स्नेह बढ़ता है और पहचान मिलती है कि हम एक पिता परमात्मा की संतान, भाई भाई हैं। पर देह के अभिमान में आने से आज हमारे आप सब भाई जानते हैं, सबसे ज्यादा झगड़ा भाई बहन में ही होता है। क्यों हुआ? प्रॉपर्टी के कारण। क्यों हुआ? तेरे और मेरे को, बहन को कम मिला, भाई को ज्यादा मिला। एक भाई को ज्यादा मिला, दूसरे भाई ने केस कर दिया, घर में झगड़ा हो गया, माँ बाप बेचारे दुखी हो गए, चले गए, उनकी आत्मा को शांति कहाँ मिलेगी? इन्होंने कमा के बच्चों को दिया, दादा ने कमाया, बच्चे ने खाया, पोतरे ने गंवा दिया। सारा संसार ऐसे ही, क्यों? कैरेक्टर बिगड़ गया, आत्मा के चरित्र में दिव्यता नहीं आई, तो जब हमारे जीवन में पवित्रता, दिव्यता, सत्यता आती है तो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड लाइफ ब्लिसफुल लाइफ है, आनंद का झूला झूलते हैं। इसीलिए शांति के साथ साथ प्रेम बहुत इम्पोर्टेंट है, पर प्रेम और मोह में अंतर है। आज वास्तव में मोह के कारण प्रेम के नाम से विकार और मोह को हमने स्थान दे दिया और उसके कारण झगड़े होते हैं, फिर कानून लागू होता है, फिर पार्शियलिटी और इम्पार्शियलिटी, फिर जजमेंट भी किस हिसाब से करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने आत्मिक स्थिति की गहराई में जाएं। मन को शांत बनाने के लिए मैं शरीर से अलग आत्मा हूं और मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं, तो परमात्मा को कल्याणकारी कहा जाना है। ये ईश्वरीय परिवार है और परिवार में जब प्यार है तो स्वाभाविक रीति से त्याग भी है, सैक्रिफाइस भी है, सहयोग भी है, स्नेह भी है, समर्पण भाव है और इच्छा होती है दूसरे को आगे बढ़ाने की। ईर्ष्या भाव नहीं होता, वो तब है जब हम अपने आप को आत्मा समझकर दूसरे को भी आत्मा समझ श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो न कोर्ट चाहिए, न कचहरी चाहिए, न किसी बीच में किसी दूसरे का दखल चाहिए। स्वाभाविक रीति से हम सब मिल करके एक ही प्रेम के धागे में पिरोए हुए, एक परमात्मा की लगन संबंध प्रेम के धागे में, सत्यता के धागे में पिरोए हुए हैं, तो प्रभु के गले का हार बन जाएंगे और आपस में भी एक दो के साथ मिलकर के रहेंगे, वो शक्ति रहेगी। तो क्या कहना चाहती हूँ, आध्यात्मिकता से मन को बनाओ मंदिर, घर को बनाओ आश्रम और सृष्टि को बनाओ स्वर्ग। तो मंदिर में मन को मंदिर, मन के अंदर सोच के कर्म करें, पीछे नहीं सोचना पड़े, पीछे पश्चाताप ना हो, पहले मन में विचार श्रेष्ठ हो और वो जब ज्ञान की ज्योत जगती है, आत्मा को समझ मिलती है तो निर्णय शक्ति ठीक होती है और ज्ञान के बल से ही अज्ञान खत्म होता है। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो आत्मा की तीन शक्तियां मिलके काम करती हैं। पहली शक्ति है आत्मा की श्रेष्ठ संकल्प। तो आपने देखा जब दीपक जगाया तो उसमें था शुभ संकल्पों के दीप जलाओ, और ड्रामानुसार सब दीपक जल गए, एक बत्ती रह गई थी मोमबत्ती। तो मैंने संकल्प किया मैं आपकी तरफ से आप सबको समर्पण करके, आपने नोट किया, मैंने आप सबको समर्पण करके वो दीपक जगाया कि हमको शुभ संकल्प करना है, कि हमारे अंदर आत्मिक स्थिति की भावना हो, हम एक परिवार के हैं। तो हमारा मंदिर, मन मंदिर बन गया तो देह का भान छूट जाएगा। ये चमड़ी जो बाहर उतार के, जूता बाहर उतार के मंदिर में जाते हैं, इस चमड़ी से अलग होकर के मन के अंदर जाएंगे, अंतर्मुखता होगी और अंतर्मुखी सदा सुखी होता है। मन शुद्ध है, फिर दूसरी शक्ति आत्मा की जजमेंट पावर है और वो है बुद्धि। बुद्धि का योग परमात्मा से जुड़ता है तो कार्य श्रेष्ठ होता है, परमात्म शक्ति मिलती है, निर्णय निस्वार्थ होता है और साक्षी दृष्टा होकर के कर्म होता है। तीसरी शक्ति है वैल्यूज, हमारे संस्कार, ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सत्यता और हर एक के लिए एकता की भावना, तो ये संसार फिर से वही सुख का संसार बन जाएगा। तो जहां मैं ये इसीलिए मैं अपने भाइयों को, यहाँ बैठी बहनों को भी ये खुशखबरी बताना चाहती हूँ कि ऐसा स्वर्ग बन जाएगा जहाँ कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं होगी, आपको ये जॉब नहीं करना पड़ेगा, सदा ही सुखी रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग जाता है। आप सच अपने आप से पूछे, आपको जब जजमेंट की सीट पर बैठे होते हैं तो रियली रिलैक्स है, ऑनेस्टली रिलैक्स है या टेंशन है? तो टेंशन फ्री लाइफ बनाने के लिए, समाज सुधार के लिए स्वयं का सुधार चाहिए, और उसके लिए अपने लिए, परिवार के लिए और परमात्मा के लिए प्यार का संबंध चाहिए। तो ओम प्रेम, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम शांति। मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे अभी किसी और कार्य पर जाना है, तो आपसे छुट्टी लेती हूँ, बाकी भाई बहनों से नहीं सुन सकूंगी क्योंकि जाने का प्रोग्राम है।
थैंक यू वेरी मच आदरणीय सुदेश दीदी जी, आप किसी अत्यावश्यक कार्य के कारण हमारे बीच में से प्रस्थान कर रहे हैं। हम फिर से दीदी का धन्यवाद करेंगे, सभी तालियों से करें दीदी का धन्यवाद। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज के इस सत्र को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गौरी शंकर सतपते जी, जज हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक। आपके लिए मैं एक शब्द कहना चाहती हूँ, आप न्याय की बुनियाद सत्य करुणा और निष्पक्षता की, न्याय की बुनियाद सत्य करुणा और निष्पक्षता पर टिकी होती है और आप उसी का संपूर्ण स्वरूप है। आप अपने न्यायदान के कार्य में इसी प्रकार चलते हैं। आपसे निवेदन करती हूँ आप 2 मिनट में ग्रीटिंग्स देंगे।
नमस्कार, रेस्पेक्टेड गेस्ट ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस एंड रेस्पेक्टेड डेलीगेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इनफैक्ट I am attending this conference. It's a privilege for me because this type of conference never takes place in different parts of our country, but it's a rare occasion. But since we are on the topic that National Conference on Law, Society, Spirituality, a Balanced Perspective, before discussing on the point of the subject of law, I would take you, I mean to say that I would like to quote the verses of Gita, because once a person is discussing law but he is ignorant about the Gita, then I would say that it is not complete. So I am just taking you to the verses of Gita. Chapter 4, verses 7 and 8. When righteousness is weak and faints, and unrighteousness exalts in pride, then my spirit arises on earth. For the salvation of those who are good, for the destruction of evil in men, for the fulfillment of the kingdom of righteousness, I come to this world at the confluence of 2 eras. So, when righteousness and unrighteousness are in tandem, and when unrighteousness exceeds righteousness, there the incarnation of God comes. But at the same time, I would also like to quote Martin Luther King, who said, I quote, "Injustice anywhere is injustice everywhere. So, even if we find injustice in a solitary or in isolation in a remote place, it is also injustice throughout the world. So, one who wants to exults in pride is also on righteousness, because pride to some extent is good, but pride to the extreme is never good. It becomes ego, and ego never ever takes to you into a righteousness path. So before defining law, I would say that law, what is the requirement of law? To secure an orderly life. Likewise, society. Society is also required for a civilization. Because we all are gathered here for a function. But can we imagine of a function or conference alone? So, society is also important. Then third comes spirituality. Spirituality is the way of life, of living out, because spirituality always exists in every human being, but one has to realize it. So I would connect all the three words in one line, that is, it is the way of living out the life. So the balanced perspective is the way of living out the life. Here, I would also, with the permission of the chair, I would also like to stress a few words about the duty of a lawyer. It is always expected that a lawyer should always take the side of the righteousness. But I would stress it a little bit, because the person who is on a different sphere, or who has committed a crime, also deserves something, because lawyers is not always the duty of lawyer is not always meant to help the righteousness, but the person who is also evil, he also deserves, because the effect of crime has to be taken care of. Because once a person has committed crime, but we don't know under what circumstance he has committed the crime. The thing is that the duty of the lawyer is to know the under what circumstance he has committed the crime. Because our society believes in the theory of punishment that would only believe in punishing the crimes but not the criminals. You might be knowing that Dasyur Ratnakar has become Maharshi Valmiki. Had there been no sympathy on Dasyur Ratnakar, he would not have been a saint and later in life. So I always believe that the unrighteous person also deserves some kind of sympathy. But that sympathy should be towards his reformation. So that is the motto of our system. At the same time, once we assume the office, we usually take the oath in which we always believe and say that we will discharge our duty without fear or favor, ill will and affection. These four words are very important, because in the days of spirituality, I would say that once you are not aware of your duty, you are not aware of your job, because we always believe that God is job and job is God. Because if we are not doing our job, then we are failing in our duty. So I would say that these four words, fear, favor, ill will and affection, would definitely help everybody, every common human being. Here I would like to share my experience, because while holding a court in a custody matter of child, I have called both the parents along with the child, but I was in a situation of, I mean to say, I was in a quandary as to how to solve the issue, how to talk the child. There I would say that the thing, the Almighty has imbibed something in my mind. So while discussing with the child, I started with the child that, "Bacha, bete, aapko chocolate acha lagta hai?" He replied, "Yes." Then I said, "Whether you like to play?" He said, "Yes." So why I am saying so? Because once you make the child comfortable, then he can express his feelings. So in this way, I talked with the child, and later on, I achieved the goal. I achieved the goal. Because when I asked that whether you like your father, he said yes. That means the child is deprived of love and affection of his father. Because the child is also staying with his mother. So the child has got the right to live with the love and affection of the parents. So my duty is to convince the parents to go further for the child. And I convinced the parents. For the benefit of the child, both the parents agree. And the mother agreed to spare his son for the custody of the for the custody of his father, because she just experienced what is the necessity of the child. So in a situation like this, what is spirituality? Spirituality is the way of living out your life. I mean to say that you can also remember Mahabharata. There Lord Krishna has abolished the abuse. He has not abolished anybody. It is a character, that the evil character has been abolished, have been done away with. So in our mind, body, there are some evil character. We can resort to spirituality to cross that evil things which we are having. So spirituality, you can also treat spirituality like that. And one more thing, that I will also connect spirituality with mediation and meditation. Because once you are focused, then you can take up mediation in a better way. You might be taking mediation in some other way, but once you are focused, you can take mediation in a better way. So to achieve the ultimate eternal peace, you have to meditate. You have to meditate so that you can mediate between the parties. Because you must be knowing that nobody comes forward to decide a dispute between the parties. Because everybody wants to remain neutral. And so that the other side will not say anything, would not say any adverse against you. So the role and duty of the advocate is very, very delicate, because he is taking side of one party. But at the same time, if we can mediate the issue and resolve the dispute, then both the party will remain in happy. So the litigation will end there. So to mediate, you have to meditate. That is what I think in a present day market scenario. But people think that lawyers are taking, the advocates are taking wrong side. But I always believe that lawyer never takes majority. I mean to say that most of the lawyers never takes the side of anybody, because they have been paid to defend a person. So how to defend, it is for him to decide, and how to resolve the issue. So in this way, one can also bring the philosophy of life. So I have nothing more to say, but one more thing, that the welcome song, which in fact impressed me, I'm just reading out 2 to 3 stanzas and just want to explain in lucid way what is the न्यायपालिका के सर पर जिम्मेदारी का ताज है, मगर आज ये ताज हिल रहा है, आपको रखनी है लाज। सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द जुडिशियरी एंड लीगल फ्रेटर्निटी टू मेंटेन इट्स टू अपहोल्ड इट्स डिग्निटी। सो सिमिलरली आध्यात्म सशक्तिकरण से समस्या का समाधान करे, स्वर्णिम आचार विचार में स्वर्णिम भारत निर्माण करे, विश्वगुरु भारत के न्यायिक समाज का दर्शन पाएगा। आध्यात्मिक सशक्तिकरण स्पिरिचुअलिटी, सो इन द वे ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड यू कैन ऑल्सो यूज योर स्पिरिचुअलिटी टू रिजॉल्व द इशू। एंड लास्ट वन, राजयोग का प्रयोग से लाय स्नेह शांति सद्भावना, कथनी करनी एक कर मूल्यों की करे स्थापना। दैट मीन्स राजयोग मेडिटेशन, सो बाय वे ऑफ मेडिटेशन यू कैन ब्रिंग पीस हार्मनी इन दिस सोसाइटी। सो विथ दिस आई रिमेन। जय हिंद, थैंक यू।
ओम शांति। हमारे आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी जी हमारे बीच में से प्रस्थान कर रहे हैं। मैं आदरणीय पुष्पा देवी जी से निवेदन करती हूँ, आपका वह शॉल एवं सौगात द्वारा सौगात प्रदान करें। आदरणीय लता दीदी जी आपको प्रसाद भेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजशेखर रेड्डी जी, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं हमारे मेहमानों से निवेदन करती हूँ, कृपया वे केवल 2 मिनट में अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करेंगे। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रमाथ पटनायक जी, चेयरपर्सन ओडिशा रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल भुवनेश्वर। हमने कल आपको सुना ही है, तो अभी संक्षिप्त में आप अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करेंगे।
शांति। इनफैक्ट टाइम इज आई बी वेरी वेरी ब्रीफ इन माय एड्रेस। I have been attending this session since morning 4 o'clock. It was a really enlightening session, and all the my previous speaker, they have already spoken about, and they have delivered their thought provoking speeches. Honorable guest on the dais, an honorable guest of the dais, today's topic is law, society and spirituality, balanced perspective. There are certain facets of spirituality, as we all know. That is one as that is compassion. Brother Justice Satpathy has spoken about Srimad Bhagavad Gita, which proclaims that all creatures are children of God, and God is permanently dwelling in each and everybody. That spiritual thought implants deep compassion. Another aspect of spirituality is forgiveness. In the morning, Sister Shivani has spoken about one should forget and forgive. Because in our scripture it is said, Saktanang Bhushanang Khyama. That means forgiveness is ornamentally adorns one's behavior, and forgiveness induced by spirituality is immensely beneficial. Third aspect I would delve upon, that is peace. Peace is another boon of spirituality. In our Vedas also, Shanti Skutam is there, mantra of peace, which broadly invokes Almighty to bestow peace on everybody, which will lead to peacefulness and blissfulness of five elements, that is water, air, earth, fire, ether, also flora and fauna. And another aspect of spirituality is prosperity. We know that Gayatri Mantra, that is one which spreads prosperity in all elements. So, as law is concerned, law is a set of rules which provides a just society so that the rights of the individuals can be realized. And in the morning, Honorable Justice Rathi has spoken about that laws should be made so that there should be no room for any interpretation. I would also agree with his view, because sometimes the contradictory interpretation at the top breeds myriad confusion at the bottom. And we all know that when the society is spiritualized, the goals of the orderly society can be achieved. And in our courts, the motto is Satyam Eva Jayate, truth alone triumphs. Due to paucity of time, I would wind up my address by expressing my gratitude to the honorable organizers to have given me opportunity to say a few words. Thank you very much.
Thank you very much, Honorable Mr. Justice Pramath Patnaik ji. आपने अपने विचारों के सागर को गागर में भरकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया और आपने हमें ये बताया कि स्पिरिचुअलिटी के बूंद क्या क्या हैं, फॉरगेट एंड फॉरगिव, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. तो याद आया कि फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व फॉरगिवनेस बट बिकॉज यू डिजर्व पीस. ऑलवेज फॉरगिव योर एनिमीज, नथिंग अनॉयज देम सो मच. फॉरगिवनेस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ लव. I forgive myself and set myself free. हम दूसरों को forgive नहीं करते हैं, खुद को करते हैं, क्योंकि हमें उसी से पीस मिलती है और हम उससे फ्रीडम पाते हैं, सच्ची स्वतंत्रता पाते हैं. आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रदर एमवी रमेश, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट. आपके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में विवरण देती हूँ. आप ब्रह्मा कुमारीज में मोर देन 20 इयर्स से ज्वाइन हुए हैं और आप प्रेजेंटली आप तेलंगाना में हैदराबाद में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं। आपने बीकॉम एलएलबी एलएलएम एंड पीजी डीवीएस स्पेशलाइजेशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में किया है। आप पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर भी रहे हैं। आपने जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन की थी एज अ डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिप और अभी आप पीडीजे हैं और काफी समय से सोशल वर्क भी करते हैं और ब्रह्मा कुमार से बहुत अच्छे से जुड़े हैं। आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और आप न केवल सोशल सर्विस लेकिन अनेक आत्माओं का इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा कल्याण भी करते हैं। जैसा आपने अपने जीवन में परिवर्तन किया उसी के द्वारा आप औरों के भी जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। ऑनरेबल ब्रदर एमवी रमेश जी अपने ग्रीटिंग्स प्रस्तुत करेंगे।
Divine pranams to the divine guests on the bench, on the dais and off the dais. I will only take 3 to 4 minutes because I am conscious of the time. Because for the last speaker it is very difficult to give the message. In the courts of law generally, when the main contesting parties files their pleadings, the formal party will file a simple memo, adoption memo. So for all the laws, the mother law is the constitution of law, constitution of India. You all know the preamble of the constitution of India. That itself indicates law and spirituality. The preamble reads like this: we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, to secure to all its citizens justice, liberty, equality and to promote fraternity among all the citizens of India. These golden words, justice, liberty, equality and fraternity, indicates the nexus between law and spirituality. We cannot be equal to all, one and all, unless we have a spiritual bent of mind. If you closely examine in the world for any crime, only the root cause is 5. Sex lust, anger, greed, ego, jealousy. These 5 are the causes for the crime. And there is a subtle distinction between to the present topic, law, justice and dharma. Those sounding synonyms, but it has a very subtle distinction and meaning. I will give a small example. A and B are very close and bosom friends. A borrowed an amount of rupees 6 lakhs from B and executed a promissory note agreeing to repay the same with interest. After 4 years, A has developed in its business and upgraded and established well. B, who lent the amount due to his misfortune, died and his family on the roads. If we see in the perspective of law, because it has passed away 4 years, Limitation Act prescribes it is a time barred debt after 3 years. Justice says that in spite of it is a time barred debt, you have to repay the same. with interest, because there should not be any burden of debt of any kind before leaving this old mortal. Because the B's family is at very difficulties and on the roads. Dharma says, not only repay the amount which is time-barred one with interest, but also give sufficient protection to the family to sustain them again in the society. So if you strike the balance between law, justice and dharma, then you are a best jurist. You are a best judge. In common parlance, doctors are next to God, but I say jurists are just to God. So we are all just to God. So we have to strike the balance between these three, law, justice and dharma. Then only we can render good judgments and we can grant workable reliefs to the society. In respect of the advocacy, I may say there are three kinds of juries. One is money-oriented, another is result-oriented, and third one is work-oriented. If you are money-oriented and result-oriented, you may not be successful always. If you are work-oriented, the result and money will follow you. This is the secret of advocacy. And of late, the very complaint of the litigants to the courts and the system is very poor communication between the advocate and the client. And they are not communicating what is happening in the courts. So please have healthy communication and update them what is going on in his case and what is the role of the witness or the party litigating the same. So I request all the, because this is August gathering from all over India of juries, because when independence is there, independence of bar and bench forms the backbone of the democracy. If we have functional and decisional independence, then only we can render, like Lordship has referred, the pledge of a judge. He has to render the justice without any fear or favor, ill will or affection. So then only you will render a good judgment if you are not having any of these audacities while rendering judgments. The last but not least one is, as a lawyer, as a jurist, as a judge, have your own conduct and self goals. Otherwise it becomes very difficult to be in a successful jurist in the profession. If we follow the law of nature and laws of God, then there is no need to follow this statutes made by the parliament. So that is the spirituality. So spirituality is ultimate. If we follow this spirituality, we can not only render justice. See, we have to render justice social, economic and political, as per the preamble of the Constitution of India. So please treat your clients as your guests and as your, he is the feeding you, feeding your family, feeding the profession, because he is a guest approached the court of law seeking justice. after I am introduced to this Rajyoga meditation, my perspective in the court of law has been changed completely. I used to go to the bench 5 minutes early, and I used to give lot of drishti to all the advocates, litigants and parties. And I used to make thought that all these brother advocates and litigants are my guests to the court, and they are assisting me in arriving at the truth and at right conclusion. So when I am having this feeling, then the positive vibrations naturally emerges and develops. So make always a positive, pure and purposeful, peaceful and productive thoughts. Sister Shivani has referred it, the power of positivity. If we are positive even in the odd situations and in adverse situations, certainly the power of purity, peace would touch your feet. So simple technique is, and this is God's directions: see no evil, hear no evil, talk no evil, think no evil, and eat no evil also. These are the simple directions of lots of Lord Shiva. I hope you will enjoy this session, and you will become a finest and a divinest a jurist in the coming days. Thank you very much for giving me this opportunity.
Thank you. Thank you very much, Brother M.B. Ramesh Ji. Chand shabdon mein aapne itni sari baatein hame batayi. Justice is not built in courts alone, but in the conscience of each individual. Yehi aapne bataya hai ki hum jab tak andar, hamare andar balance nahi hota, tab tak hum law mein, society mein balance nahi kar sakte hain. अभी मैं आगे आमंत्रित करती हूँ ब्रदर हितेंद्र मेहता, मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज EPFO, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आप न्यू दिल्ली से आए हैं और आप संक्षिप्त में अपनी ग्रीटिंग्स पेश प्रस्तुत करेंगे. ब्रदर हितेंद्र मेहता जी.
मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड रिवर्ड sisters and brothers on the dais, off the dais. As Brother Ramesh said, it is very difficult for the last speaker, actually he was the second last, you know, to speak in maybe 1 or 2 minutes what he wanted to say. But then to begin with, I'll just speak only few points, only in 2 minutes I'll try to summarize. I must compliment in the first instance for selecting such a wonderful theme. I mean, law, society and spirituality. I was wondering, I mean, who could have thought of, you know, such a beautiful theme and trying to draw a balanced perspective out of this? How these are interconnected, how these are related. Being an author of, you know, so many books, I tend to research a lot. And same happened here also when I was trying to draw like how they are related with each other. So when I see law actually governs the external behavior of the society, so it tries to regulate. And then society provides the context and subject of the law, because it is the society's conduct which gives food for thought to the, you know, lawmakers, whether something should be regulated or legislated. And then spirituality, it actually guides the internal, you know, conscience. So these are the functions. Then I was thinking how they are connected. I mean, law, it needs actually a moral foundation from spirituality. And then it needs society's consensus also. So they are connected. Law is connected with both. So is the case of society. The society shapes and is shaped by both law and spirituality. Isn't it? And then spirituality, it influences society's ethos and enriches the spirit of the law. So to say, when law provides the formal structure that governs the behavior in society, so can we say that law is static? The answer is no. Law is not static. It is the society written in rules. So this is the connect. I'm sure you all will agree. But having said that, the law alone, you know, cannot build a humane society. As we have heard from the previous speakers also, while the law will tell you that what you can do, what you can't do, but it does not always guide towards what we should do. I mean, here comes the morality, the ethical conduct, and this is where the society and spirituality steps in. So what we can do to improve the situation, if the law situation is not good, I mean, in the poem that was cited in the very beginning, so there was, you know, certain lines which were actually indicating towards the alarming situation, what is happening in the judicial system. So what can we do? So I'm actually reminded of Dr. APJ Abdul Kalam, I mean, who always said that, I mean, I need not change the world in the first go, in the first instance. I mean, it happens, when I was young, I thought I'll just influence the whole world. But then as the time passes by, so I thought it is too difficult for me to change the world. So then I narrowed down my vision. I thought I just start with my country. So I tried to influence my country. It also, you know, sounded very difficult with, you know, passage of certain more time. And then it occurred to me that I should, you know, confine to changing the society where I live in. So as the time passes by, I realize that that is also not that easy. In society also, there are people with different kind of ethos, different kind of prides and prejudices. Then I thought, in the twilight years of my life, that I should try to focus on my family. Because time had passed, so my kids had grown up, and it was a sad state that they also would not listen to me. So then I was thinking, it occurred to me that if I had changed my conduct, if I had become a responsible citizen, if I had done some good deeds from the very beginning, it could have actually influenced my family, and my family then could have set an example for the society. And this is how I can create an example for the nation also, and who knows, it can impact the world also. I mean, this all starts with you only. And Shivani Didi also mentioned that we need to practice that this can be done. If I agree not to succumb to wrong practices, who can force me? In judicial system, things cannot work one way, or in any other system, be it police or any other authority. So unless the other side doesn't agree, so how it will work? It will not work. And coming to spirituality, so spirituality has also its own laws, just as the law has a spiritual dimension. Right? We pay considerable attention to man-made laws, but what happens that we do not give enough attention to natural or higher laws. Spiritually actually reminds us that legality is not synonymous with the morality. And this is the fact also. A law may be just in letter, but unjust in spirit. This we face in a day-to-day life, because many a times it lacks empathy. So here I am reminded of Mahatma Gandhi's quote, I mean, who once said that there is always a higher court than the court of justice, and that is the court of conscience, and it supersedes all other courts. If I am conscious of what I am doing, so I think everything else is taken care, and this is what the law of karma is. And to sum up, as we all know, the law provides a structural framework. Society brings awareness, context, and collective wisdom. Whereas the spirituality offers conscience, depth, and directions. And this is what actually tries to create a balanced perspective. What is the theme of today's this National Jurist Conference? To sum up, I'll just say one-liner. When the law speaks with justice and justice listens with compassion, society thrives. Thank you so much. And I'd like to thank in the end Sister Yeshu Didi, who actually brought me here and who introduced me to this wonderful organization, Brahma Kumaris. I'm so thankful, Sister Yeshu, and I hope to continue to contribute to the cause of this National Jurist Conference. Thank you so much once again.
अभी कार्यक्रम समाप्त की ओर है, इसलिए आप सभी से निवेदन है, कृपया आप यहाँ ही बैठे रहेंगे. थैंक यू वेरी मच ब्रदर हितेंद्र मेहता जी, आपने अपना अनुभव बताया और हमारे इंस्टीट्यूशन पे भी यही सिखाया जाता है, व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस. अभी मैं अपने शब्द सुमन अर्पित करने के लिए और मेडिटेशन का अनुभव कराने के लिए लता दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ. आप नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग है, आपने कल भी दीदी को सुना था और आप विगत 40 वर्षों से अधिक समय से श्रीश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है. आप बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और बाद में पिछले 30 वर्षों से माउंट आबू में एज अ लीगल एडवाइजर इस इंस्टीट्यूशन के आप सेवाएं दे रहे हैं. लता दीदी जी,
ओम शांति. बहुत देर से सुन रहे हैं ना, थोड़ा खड़ा होके हम 3 बार ओम शांति बोलेंगे. अभी पूरा ही होने हुआ आ रहा है, मगर फिर भी एक बार सभी खड़े हो जाएं और पीछे वाले थोड़े आगे आ जाएं, तो थोड़े आगे क्योंकि लाइव जा रहा है तो सब जगह फोटो भी अच्छा जाएगा और आप सबका भी फोटो आ जाएगा. आगे आ जाएं थोड़ा. चलिए अभी हम सब 3 बार बोलेंगे. ओ शांति, ओम शांति, ओम शांति. अभी सभी बैठ जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, बहुत समय से बैठे थे. तो अभी आज का जो टॉपिक है, राष्ट्रीय न्यायविद महासम्मेलन, कानून, समाज और आध्यात्मिकता, एक संतुलित दृष्टिकोण, इसके ऊपर तो हम कल से सुन ही रहे हैं. वैसे तो मैं कुछ पॉइंट्स लाई थी आप सबको देने के लिए, मगर अभी मैं उसमें समय ना गवाते हुए मैं मेडिटेशन कराना चाहूंगी, क्योंकि दैट इज द प्रैक्टिकल वे टू लर्न समथिंग एंड विच यू वुड ऑल लाइक टू टेक फ्रॉम यर. हम जानते ही हैं कि दुनिया में मैन मेड लॉज भी हैं तो गॉड मेड लॉज भी हैं. भगवान के मैन मेड लॉज से सारे हम वकील और बैठे हैं जजेस, तो हम जानते ही हैं कि क्या है, मगर साथ साथ में भगवान के लॉज को भी हम बहुत कुछ जानते हैं कि जो मैं करूंगा, जैसा मैं करूंगा, जितना मैं करूंगा, वो वैसा और उतना ही मुझे प्राप्त होगा. एवरी एक्शन हैज इट रिएक्शन एंड इट कम्स बैक टू मी. मैं अच्छा दूंगी समाज को, अच्छा मिलेगा. मैं बुरा दूंगी तो मुझे बुरा मिलेगा. तो दीज आर गॉडली लॉज. तो इन लॉज के ऊपर ज्यादा ना जाते हुए हम सब मेडिटेशन में इनका थोड़ा बेनिफिट लेंगे. तो चलिए थोड़ा अलर्ट होके बैठ जाएं. आई नो दिस इज नॉट द टाइम फॉर मेडिटेशन, बट मेडिटेशन हैज टू बी डन ऑल द टाइम. ओम शांति. मैं एक शुद्ध, पावन, पवित्र शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के बीच में विराजमान मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। मैं आत्मा इस सृष्टि नाटक मंच पर ये धारण देह धारण कर अपना पार्ट प्ले कर रही हूं। मैं आत्मा, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव की अलौकिक संतान, परमात्मा पिता, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, गुणों का भंडार, सर्वशक्तिवान, कल्याणकारी, वरदाता, सुखदाता, सर्वश्रेष्ठ मेरा पिता है। वह इस समय धरा पर अवतरित होकर हम सभी बच्चों को फिर से शुद्ध और पावन बनाने के लिए आए हैं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, समाज परिवर्तन करने का बीड़ा परमात्मा ने हम ब्रह्मा कुमारी के कंधों पर रखा है। हम स्व परिवर्तन कर अपने अंदर सारे ईश्वरीय कानूनों को पालन करते हुए समाज को एक नई दिशा दिखाते हुए परिवर्तन की राह सिखाते हुए स्वयं के अंदर कैसे हमें अपनी चेकिंग करके अपनी कमियों को, बुराइयों को, पाप कर्मों को भस्म करते हुए परमात्मा से शक्ति लेकर इन सभी से मुक्त होकर अपने आप को शुद्ध, पावन, शक्तिशाली और गुणों से भरपूर कर स्वयं परिवर्तन करना है। मैं आत्मा अब एक शुद्ध और पावन आत्मा हूं। मेरे अंदर सुख और शांति जो मुझे चाहिए थी जीवन में वो मिल गई परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से, और मैं आत्मा अब भरपूर हो रही हूं। और भरपूर होकर ये शक्तियां सारे विश्व में प्रकंपन की तरह फैला रही हूं। सारे विश्व में सुख और शांति की किरणें फैल रही है। मेरे साथ साथ विश्व भी परिवर्तन हो रहा है और ये स्वर्ग नई दुनिया बन रहा है। वैसी दुनिया जो कभी मैंने कल्पना की थी कि जहां सुख और शांति हो, प्रेम हो, भरपूरता हो, आनंद हो, वो दुनिया परमात्मा स्थापन करने आए हैं। मैं इस चेन में अपना हाथ जॉइन कर विश्व परिवर्तन का बीड़ा उठाते हुए विश्व परिवर्तन कर रही हूँ। मैं एक शुद्ध पावन आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की सबसे प्रिय संतान हूँ। परमात्मा को प्राप्त करना आसान बात नहीं है। कहावत है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचान सकता है, और वो पहचान आप सभी को यहाँ इस कॉन्फ्रेंस द्वारा प्राप्त हो रही है। आप सभी परमात्मा के अनन्य बच्चे हो, बहुत लकी सितारे हो। अपने आप में ये सुमान का नशा, शुद्ध नशा लेकर मैं पुनः कार्य क्षेत्र पर उपस्थित होकर विश्व को परिवर्तन कर कर ही रहूंगी। ओम शांति, ओम शांति। बस लास्ट में इतना ही कहूंगी, खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। ओम शांति।
थैंक यू लता दीदी, आपने हमें मेडिटेशन की अनुभूति कराई। और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पुष्पा दीदी जी के लिए कि आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य हमारे बीच में प्रस्तुत करें। पुष्पा दीदी जी के लिए मैं कहना चाहूंगी, मरुभूमि में बने जीवन में हरियाली बनकर आए, मुरझाए से दिलों पर खुशहाली बनकर छाए। अतुलनीय है दीदी आप, अतुलनीय है दीदी जी आप, उपमा किसकी बताऊं, आपसे खुशबू पाऊं या आपकी खुशबू बिखराऊं। आदरणीय दीदी जी इस टूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन हैं और डायरेक्टर करोल बाग दिल्ली सेंटर के हैं, और आपके अंडर बहुत से सेंटर्स हैं और आपने देश विदेश में काफी सेवाएं की हैं। 50 वर्षों से भी अधिक समय से आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कई सारे अवार्ड से आपको नवाजा गया है। मैं अभी बहुत संक्षिप्त में बताया है, जब दीदी जी का क्लास रहेगा तब हम विस्तार से दीदी जी के बारे में सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। सम्मानित मंच और आप सभी सम्माननीय स्नेही भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपकी धैर्यता के लिए, और माफी भी चाहती हूँ कि इंतजार के लिए। पर मैं संक्षेप में एक ही मूल बात सुनाऊंगी कि कानून, समाज और आध्यात्मिकता का बहुत गहरा कनेक्शन है। और आज जो समाज की स्थिति बन चुकी है, अर्थात मानव मात्र की स्थिति जो बन चुकी है, उसका एक ही मूल कारण है कि मनुष्य आत्मा कमजोर हो चुकी है। और ये सब कुछ आप अगर अंदर झांकेंगे अपने तो महसूस कर सकते हैं, और आध्यात्मिकता यही ही महसूस कराती है, और तब ही हमारा परिवर्तन सहज हो सकता है। आज के आधुनिक युग में मनुष्य के लाइफस्टाइल को देखते हुए, मैटेरियलिस्टिक एज में मनुष्य की इच्छाएं तृष्णाएं बढ़ती जा रही हैं, और कभी वह लोभ के वश, कभी वह मोह के वश, कभी वह अहंकार के वश, कभी क्रोध के वश आदि इस संसार की, इस समाज की दशा बन चुकी है। अब वह समय आ चुका है जैसे एक रात पूरी होती है और दिन आरंभ होता है, और कलयुग के अंत समय परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर हम सब उनकी प्रिय संतान हैं, और हमें उस वास्तविकता को बतला करके जागृत करते हैं कि हे आत्माएं, तुम स्वयं को पहचानो। आध्यात्मिकता इसी को कहा गया है बस। और मुझ पिता से अपना संबंध जोड़िए जिससे आप सदा मांगते आए हैं, और मैं दाता हूं, सागर हूं, ऑलमाइटी हूं। इतने मात्र की समझ से हम अपने जीवन को समस्याओं से भी मुक्त और शांति और सुख से, प्रेम से जीवन जिया जा सकता है। तो यही मैं आज का संदेश आप सबको इन्हीं शब्दों के साथ दे रही हूँ। अवश्य इस पर आप विचार कीजिए, और इसी का विस्तार भी आप यहाँ पर राजयोगा क्लासेस में और कई लेक्चर्स में सुन भी रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। ओम शांति।
थैंक यू आदरणीय पुष्पा दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे दीदी जी ने कहा था कि हम परमात्मा से मांगते हैं, तो परमात्मा से मांगने के स्थान पर परमात्मा की मानना शुरू करें। जो वो कहते हैं वो हम मानेंगे तो हमें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सब प्राप्तियां स्वतः ही हो जाएगी। अभी मैं इस कार्यक्रम की लास्ट प्रोग्राम के लिए वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए आदरणीय डॉक्टर बी के नथमल भाई जी को आमंत्रित करती हूँ। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जूरिस्ट विंग के, और आप हमारे विंग की बहुत सेवाएं करते हैं। पिछले 50 वर्षों से भी अधिक आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपकी वर्सेटाइल सेवाएं हैं और अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आपका है, ब्रदर डॉक्टर बी के नथमल जी।
ओम शांति। आज का ये सुंदर सेशन, और आप सबने बहुत धैर्यवत सुना, इसके लिए और विशेष वो ईश्वर की प्रेरणा प्रजापिता ब्रह्मा का माध्यम से परमात्मा का ये दिव्य संदेश, तो सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को ही हम सभी मिलकर के थैंक्स देते हैं, धन्यवाद अर्पित करते हैं। साथ साथ इस कार्यक्रम की हमारी परम आदरणीय पुष्पा दीदी जी, जो हमारी विंग की चेयरपर्सन हैं, और आपके ही मार्गदर्शन में हमारी जूरिस्ट विंग फलती और फूलती रही है, तो मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि भले ही अभी मंच पर उपस्थित नहीं है, हमारे ऑनरेबल जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी जी, आपने इस इनॉग्रल सेशन को इनॉग्रेट किया, आपको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस सेशन में हमारे उड़ीसा हाईकोर्ट से पधारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गौरी शंकर सतपति जी, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। आप इतनी दूर से आकर के, और पहले भले ही आपका विचार नहीं था कि मैं कुछ सुनने के लिए खास आया हूं, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि आपने इतना अच्छा अपना मंतव्य व्यक्त किया, इसके लिए जोरदार तालियों से आपका हम धन्यवाद देते हैं। और साथ साथ हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस परमत पटनायक जी, जिनका कल भी हमने सुना और आज भी सुना, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। मुझे याद है करीब 2015 से मैं आपको निवेदन कर रहा था, लेकिन कहते हैं समय के पहले और समय से के साथ ही कार्य होता है, तो 10 वर्ष के बाद आपने आग्रह स्वीकार किया और यहाँ पर पहुंचे, तो आपका भी बहुत तालियों सहित बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। हमारे बीच में ऑनरेबल जस्टिस पीडी राठी जी किसी कारणवश यहाँ से छुट्टी लेके गए। मैं हमेशा मानता हूँ कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए भी और रेगुलर आकर के ब्रह्मा कुमारीज में ये परमात्मा के महावाक्य सुनना और आश्रम में आकर के योग करना, ये हमारे जस्टिस राठी जी की बहुत बड़ी विशेषता रही। तो आपको भी मैं बहुत बहुत दिल से थैंक्स करता हूँ। हमारी परम आदरणीय सुदेश दीदी जी, जिनको जरूरी काम से जाना था, हमारे से छुट्टी लेके गए, तो आप हमारी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं और बहुत ही मृदुवासी आपने देखा और कितनी डेफ में आप अपनी बातों को आपने रखा, आपने सबने सुना। तो परम आदरणीय सुदेश दीदी जी को भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। और हमारी भ्राता MV रमेश जी, जो खास हैदराबाद से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स हैं। ब्रदर हितेंद्र मेहता जी, जो खास दिल्ली से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। और हमारी लता दीदी, ये सारा कार्यक्रम को डायरेक्शन भले ही हमारी पुष्पा दीदी जी के नेतृत्व में होता है, लेकिन टोटल वर्कआउट करना और कैसे आगे कार्यक्रम चलना है, वो सारी प्लानिंग जो है हमारी आदरणीय लता दीदी जी करते हैं। तो इसलिए हम जोरदार तालियों से हमारी लता दीदी जी का भी थैंक्स करते हैं। और हमारी श्रद्धा दीदी, जो हमारी हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, आपका भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स हैं। और रश्मि ओझा हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और हमारे इस विंग के गुड ओरिएटर भी हैं, तो आपका भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स हैं, भले ही उनका भी कुछ सेवार्थ हो, यहाँ से छुट्टी लेकर गए हैं। और हमारे बीच में जो भी मेहमान बैठे हैं और किसी कारणवश यहाँ नहीं भी बैठे हैं, तो उन सब का भी बहुत बहुत दिल से अपने आप के लिए जोरदार तालियों से धन्यवाद करें। और हमारी बहनों ने, जिन्होंने बैच के द्वारा, हमारे बहनों ने जो डांस के द्वारा, गीत के द्वारा और वेलकम सॉन्ग के द्वारा, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान दिया, सबका ही बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
आभार प्रदर्शन का भार वहन करने के लिए डॉक्टर नतमल भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। अभी कार्यक्रम समाप्त होने के पहले हमारी मंचासीन मेहमानों का सम्मान किया जाएगा। बहनों से अनुरोध है, कृपया 2 मिनट बैठिए सिर्फ आपको। इसके बाद में 4:30, भले ये सेशन हमारा लेट हुआ है, लेकिन 4:30 बजे हमारा समय पर सेशन शुरू होगा। बहुत अच्छी एक्टिविटी रहेगी, आप रिफ्रेश हो जाएंगे। और उसके बाद डॉक्टर रश्मि ओझा, जिनको आपने सुना और कितना अच्छा बोलते हैं वो, तो उनको फिर से हमें सुनने का मौका मिलेगा।